ఓం అజ్ఞాన మీరాందస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షువన్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణలలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేష గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగిరాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయం ఉదీరయే. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నంద గోప కుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. సర్వప్రథమ ఆప్ సబ్కో స్వాగత్ కర్తే హై కృష్ణ రసాయనం కార్యక్రమ మే. పిచ్చలే సత్ర మే హమ్ లోగ్ భాగవత్ కే పహలే స్కంద కే 16వా అధ్యాయ పూరా కియా థా. ఆజ్ కే సత్ర మే 17వా అధ్యాయ పూరా కరేంగే ఆజ్. ఔర్ పవర్ పాయింట్ ఆప్కో దిఖ్ రహా ఉధర్ దేఖియే. భగవాన్ కృష్ణ జబ్ ఇస్ భూలోక్ కో చోడ్ కర్ అప్నే స్వధామ్ లౌట్నే కే లియే తయార్ హుయే ఉస్ సమయ్ యే కలిరాజ్ కా ప్రవేశ్ హువా ఇస్ దునియా మే. తో చార్ యుగ్ హై సత్య త్రేతా ద్వాపర కలి. యే కలియుగ్ కా అభి 5000 సాల్ హో చుకా హై. యే కలి కలియుగ్ కే జీవన్ కో వివిధ తరహ కే గలత్ కర్మో మే లగాతా హై జబ్ తక్ కోయి భగవాన్ కృష్ణ కే భక్త నహీ హోతే. లేకిన్ అగర్ కృష్ణ కే అగర్ కోయి హోగే తో కలి ఉన్కో స్పర్శ నహీ కర్ పాయేగా ఉన్కో. దేఖియే భగవాన్ అప్నే ధామ్ కే లియే లౌట్ రహే హై. అభి కలి దేఖ్ రహా హై. దేఖా అప్నే కోనే మే దేఖ్ రహా హై వహాన్ దిఖ్ రహా హై నా. సోచ రహా హై అభి నికల్ గయే భగవాన్, అభి మేరా జమానా ఆ గయా. ఐసే సోచ రహా హై వో. तो कली का मिशन क्या है? उसका लोगों को चार एक शुद्ध गुण दिए गए हैं इधर, जैसे शुद्धता, कृपा, तपस्या और सत्य परायणता. इन चार अच्छे गुणों से लोगों को डाइवर्ट करना, उनको इसको तोड़ने के लिए पाबंदी करता है कली. क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये चार नियमों को तोड़ने से, अभी देखिए सत्यपरायणता को तोड़ता है तो लोग जुआ खेलते हैं उसके लिए. इस तरह तपस्या को तोड़ने का मतलब है विभिन्न तरह के नशापान करना. और कृपा करुणा दिखाना है दूसरे जीवों के ऊपर, उसके विरुद्ध है मांसाहार। और प्यूरिटी शुद्धता के विरुद्ध क्या है, ये अवैध संग। तो आप ये चार नियम तो आप लोग जानते हो, मांस खाना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग, नशा, चार चीज। अभी मैंने जो बोला है ये चार चीज तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके सूक्ष्म तरीके से भी इसको जानना आवश्यक है। मांस खाने का मतलब क्या है, परजीवों को क्लेश देना। तो ये जानवरों को ही नहीं, हम में से कोई बोल सकता है कि मैं मांस नहीं खाता इसलिए मैं शुद्ध जीवन जी रहा हूँ, नहीं, लेकिन हम परजीवों को दुख देते हैं हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। तो अगर हम दूसरे जीवों के साथ झगड़ा करते हैं कलयुग में और उनमें दोषारोपण करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, इससे भी हमारे अंदर कलि बढ़ सकता है। इसलिए हम परजीवों को क्लेश नहीं देना चाहिए मांस खाना। जुआ खेलने का मतलब क्या है, सत्य को तोड़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब है मनोधर्म के अनुसार बातें, मनोगठित बातें बोलना, इसका मतलब है झूठ बोलना। नहीं तो शास्त्र को पढ़कर लोगों को समझाने के बदले शास्त्र को, शास्त्र से हटकर लोगों को मनमानी चीजें उनको बताना, उनको वो भी क्या है, स्पेकुलेशन, इसको बोलते हैं जुआ खेलने के बराबर है, है ना। क्योंकि जुआ खेलते समय या तो आपको बहुत पैसा मिल जाता है, नहीं तो सब पैसा निकल जाता है आपसे। इस तरह झूठ बोलने वाले को भी कभी कभी बच जाता है वो, कभी कभी पुलिस से पकड़ा जाता है वो, है ना, ऐसे है। इस तरह है, वो जुआ का मतलब है मनोधर्म के अनुसार मनोगठित चीजों को लोगों को बोलना। इसलिए जो शास्त्र पढ़ते हैं उनको शास्त्र पढ़कर उसको ही दोहराना चाहिए लोगों को। तीसरा है मांस खाना, जुआ खेलना, अवैध संग जो है उसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि स्त्री पुरुष शादी करके वो विवाह धर्म को अपनाकर गृहस्थ धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन ये गृहस्थ आश्रम को छोड़कर गृहस्थ आश्रम के बाहर जो संबंध रखता है, अवैध संग रहता है, वो मना है। इस तरह शादी के पहले, शादी के बाहर जो संबंध जोड़ते हैं वो अवैध संग माना गया है। लेकिन अवैध संग का सूक्ष्म मतलब क्या है, अपने नाम यश को फैलाने के लिए, बड़ा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। ये नाम यश इत्यादि को फैलाने, पूजा लाभ प्रतिष्ठा बोलते हैं इसको, इत्यादि को फैलाने के लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा का स्थूल रूप से वो मैथुन जीवन होता है, लेकिन मैथुन जीवन का सूक्ष्म रूप क्या है, अपने नाम यश फैलाने के लिए लोग अपने को सामना करते हैं। जैसे कर्ण ने बोला कि जब तक भीष्म नीचे नहीं उतरेगा मैं नहीं जाऊंगा, क्यों, अगर कौरवों को कुछ यश प्राप्त होता है तो लोग बोलेंगे भीष्म ने कर दिया, ऐसे बोलेंगे, हमको कोई परवाह नहीं करेंगे, हमारा छाप कैसे होगा है? इसलिए वो बोला कि जब वो उतरेगा मैं जाऊंगा अंदर, ये अहंकार की बात है, है ना। इस तरह ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा बोलते हैं इसको। और चौथा क्या है, मांस नहीं, जुआर नहीं, अवैध नशा नहीं। नशा क्या है, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग एडिक्शन करना, ये तो सब लोग जानते हैं। हम बोलेंगे भक्त लोग हम नहीं करते हैं, ठीक है हम नहीं करते, लेकिन नशा का मतलब क्या है, गर्वित हो जाना, गर्व करना कि मैंने ये सेवा किया है, मैंने ही ये सेवा चालू की है, शुरू किया है, नहीं तो मेरे बिना कोई नहीं कर सकता ये सेवा, नहीं तो ये सेवा मैं करते करते मेरा 10 साल का अनुभव है, 15 साल का अनुभव है, सब लोग मेरे पास आकर भिक्षा मांगना पड़ेगा उनको ये सेवा करने के लिए। इस तरह के अहंकार के वश में हो जाना, ये करने से भी क्या है, हमारा नशा चढ़ जाता है। कोई धनी होकर धनांध हो जाता है, कोई ऊंचा कुल में जन्मा है वो गर्वित हो जाता है, इस तरह कभी कभी हम लोग भी गर्वित हो जाते हैं। तो ये चार चीज करने से भी कली आ जाता है, गर्व करने से, झूठ बोलने से, पराजीवों को क्लेश देने से, और चौथा क्या बोला मैंने, नहीं, देखिए मांस खाने का मतलब है पराजीवों को क्लेश देना, जुआ खेलने का मतलब है झूठ बोलना, और नशा लेना मतलब गर्वित हो जाना, और क्या बचा है, हाँ अवेसंग मतलब है अपने आप को अपने यश को फैलाने के लिए कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है, गुरु को कुछ नहीं करता है, गुरु को वैष्णवों को भगवान को कुछ करने के बदले मेरे अपने आप की मान सम्मान यश को कैसे बढ़ाऊंगा, इस तरह करता है, ये सब सूक्ष्म रूप है। तो इस तरह कली आ जाता है। देखिए कलयुग में ये चार चीज अभी हमें बोला ना आपको, इसके कारण चार अवगुण है, क्या मालूम है आपको, अलग अलग लोग इस दुनिया में कलयुग में कुटीनाटी करेंगे। कुटीनाटी का मतलब क्या है, गलतियां करेंगे, जैसे हिपोक्रेसी बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, उसका मतलब है बोलना कुछ करना और दूसरा ऐसे। इसके कारण क्या होगा, अगर कोई किसी ने पहचान लिया उनको, हे ये कुटीनाटी कर रहा है, तो उनके साथ वो झगड़ा करेंगे, क्वारल, और झगड़ा करते समय वो समझाने के लिए प्रयत्न करेगा वो व्यक्ति, तो उनके विरुद्ध रिबल करेंगे, व्हाट इज रिबल इन हिंदी, विरोध करेंगे वो उनको, और विरोध करके चौथा क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी चार चीज में बोलो, पहले क्या करेंगे, ड्यूप्लिसिटी, कुटीनाटी करेंगे, अगर कोई पकड़ता है कुटीनाटी क्यों कर रहे हो, पकड़ेगा तो क्या करेंगे, उसके साथ झगड़ा करेंगे। अभी झगड़ा करके क्या करेंगे, बोलेंगे कि ये मेरे में दोषारोपण करता है ये, इसलिए मैं इसको इसके विरुद्ध जाऊंगा करके वो विरोध करेंगे उसको, और विरोध करने के बाद वो जब समझ जाएंगे, उनको छोड़कर निकल जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। देखिए अभी पति पत्नी हैं, आजकल जमाने में देखा जाता है, तो उन दोनों में से एक के चरित्र में कुछ ये हो गया, गड़बड़ हो गया, तो दूसरा उनके ऊपर शंका करता है, करेक्ट है, शंका करके जब पति पूछता है पत्नी को, नहीं तो पत्नी पूछते है पति को, तुम्हारे व्हाट्सएप में क्या आया है, ऐसे मोबाइल में कुछ पूछ रहा है, क्या बोला, मेरे ऊपर शंका कर रहे हो क्या, तो क्या करेगा, झगड़ा करेगा। अब झगड़ा करने के बाद क्या बोलेगा, उसकी बात नहीं मानेगा, विरोध करेगा, विरोध करके क्या करेगा, डाइवोर्स कर देगा, चौथा है इंडिपेंडेंट, होता है ना। इस तरह अगर आपसे वरिष्ठ कोई है, उनसे कुछ आप धोखा देते हो उनको, वो बुलाकर पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या हमारे में दोष देख रहे हो क्या, मैं आपके साथ झगड़ा करूंगा, अभी उनके साथ झगड़ा करना, वरिष्ठों से झगड़ा करना, झगड़ा करके विरोध करना और इंडिपेंडेंट हो जाना, ये कलयुग में देखा जाता है। बोलते हैं कि ये सब किधर से आता है, ये सब कलिराज है, तो कलिराज इसलिए हम लोग बहुत सावधान से जीना पड़ेगा कलयुग में, क्योंकि कलि ऑलरेडी है इधर दुनिया में अभी, लेकिन इधर नहीं है मंदिर के अंदर, क्योंकि मंदिर के चार दीवार जो है ना, इसके अंदर जितना आध्यात्मिक क्रियाएं चलते हैं इधर, उतना कली का मतलब ही क्वारल है, झगड़ा है। युधिष्ठिर महाराज ने देखा, जब कलयुग का जमाना चालू हुआ, उस समय देखा, एक श्लोक बोलते हैं, जिह्म प्रायम च व्यवहृतम शाट्य कर्मम च सौहृदम पितृन मात्र सुहृद भ्रातृ दंपति नाम च कल्कनम। भागवत में बोला गया कि युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि जिह्म प्रायम च व्यवहृतम, लोगों के व्यवहार में धोखा चालू हो गया कलयुग का जमाना शुरू होते ही। क्या धोखा, जैसे आप लोग जानते हो जॉइंट फैमिली में एक बुड्ढा ऊपर होता है बड़ा टर्बन वाला है, लेकिन सब लोग उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, उसको माता पिता भाई बंधु ऐसे मानते हैं उसको, क्योंकि वो विश्वसनीय व्यक्ति है, वो एकदम वो मासूम होता है, सबकी भलाई चाहने वाला होता है, ईश्वर प्रेमी होता है, घर के घर वालों को जोड़ कर रखता है वो ऐसे। लेकिन कलयुग के जमाने में क्या होगा, कोई उनके चार बेटे हैं, उनके बीबी हैं, उनके बच्चे हैं, बड़ा परिवार है 50-60 लोगों का, लेकिन घर वाले लोग बेटे नहीं तो बेटे की पत्नी, वो लोग आपस में बात करेंगे, देखो वो बुड्ढा का 80 साल हो गया, कभी भी मर जाएगा, तुम्हारे भाई जमीन काट कर ले लेंगे, तुम बोंडी हो जाओगे, तुमको कुछ नहीं देने वाले हैं बाद में, अभी जब तक वो जिंदा है अभी मांग लो, खुद का मांग लो, खुद का काट लो, निकल जाओ इधर से। इस तरह सोचकर सब चार बेटे चार दिशा में जाते हैं अपना अपना टुकड़ा लेकर, देखा ना आपने, इसके कारण जॉइंट फैमिली आजकल रहा नहीं है, जॉइंट फैमिली को छोड़कर लोग अलग हो गए। एक पुणे में एक कॉलोनी में गया था, वो बोले कि प्रभु जी हम जॉइंट फैमिली है, ऐसे बोले, वो साथ में रहते हैं, लेकिन वो लोगों ने चार घर बनाए हैं, एक नीचे एक इधर ऐसे चार बनाए हैं, चाहे घर में रहते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली का मतलब एक ही कॉलोनी में रहते हैं, वो ही जॉइंट फैमिली है बस। बोला कि अपना हम लोग ले लिया, फिर भी रहते हैं, ज्यादा निकट आने से झगड़ा हो जाता है प्रभु जी, इसलिए चार भाई हम चार घर में रहते हैं, अपने बीबी के साथ रहते हैं, हम अपना अपना कुकिंग करते हैं, अपना बच्चों का साथ में नहीं करते हैं, क्योंकि एक को जो जमता है दूसरे को जमता नहीं। कोई बोलता है हमको इटालियन चाहिए, हमको पास्ता चाहिए, हमको पिज्ज़ा चाहिए, कोई बोलते हैं इंडियन चाहिए, हमको चपाती चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, कोई ये मांगता वो मांगता है। आजकल बच्चे क्या क्या मांगते हैं माता पिता को चाहिए करके, हैं तो बोले कि सबका खाना भोजन बनाते हैं, जमता नहीं, तो हम कुकिंग अलग करते हैं, रहते हैं अलग, लेकिन हम जॉइंट फैमिली है, क्योंकि एक ही बिल्डिंग है हमारा बस। कम से कम वो जॉइंट इतना जॉइंट रहते हैं कुछ लोग कम से कम। कलयुग में बोलने का मतलब क्या है, कलयुग के जमाने में लोगों के बीच में छोटे छोटे चीजों को लेकर झगड़ा हो जाता है। क्या बोला ऐसे छोटा चीज बोलो लोग झगड़ा करते हैं ऐसे। इसलिए हम लोगों को याद रहना चाहिए कि जमाना क्या है, किसका है, कलयुग का। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित इसलिए बोलते हैं जिह्म प्रायम च व्यवहृतम शाट्य कर्मम च सहृदम। अरे सुहृद का मतलब है जो भाई बहन होते हैं उनके बीच में भी झगड़ा होता है कलयुग में, ऐसे देखा किसने देखा, युधिष्ठिर महाराज ने देखा। और सुहृद पितृ मात्र सुहृद भ्रातृ बोलते हैं, पिताजी और बेटे के बीच में झगड़ा, माता बेटी के बीच में झगड़ा, पति दंपति नाम चकलकनम दंपति के बीच में भी झगड़ा होता है कलयुग में, क्योंकि ये कलिराज का प्रभाव है। तो भक्तों को कलिराज से सावधान रहना चाहिए, ऐसे चेतावनी दिया गया है भागवत में। इसलिए इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कलिराज जब आ पहुंचा इस दुनिया में, परीक्षित ने उनको कैसे दमन किया, उनको दमन करके रखा, कलयुग का प्रभाव को लोगों के ऊपर पड़ने नहीं दिया उनके जमाने में, उसके बाद कली को क्या क्या स्थान दिया उनको, और हम लोग उन स्थानों में से कैसे हम वर्जित रहे और सावधान रहे, ये सब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। देखिए ये कली तोड़ रहा है चार खम्भों को जो सुनहरा खम्भ है, क्या है, शुद्धता कृपा तपस्या और सत्यपरायणता, इसको तोड़ रहा है। और इस चार खम्भों को तोड़कर वो और चार खम्भों को लगा रहा है, वो मांस खाना जुआ खेलना अवैध स्त्री संग नशा उसको लगा रहा है वो। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कली ने जो किया उसके विरुद्ध करना चाहिए, हमको मांस खाना जुआ खेलना अवैध स्त्री उसको तोड़ना चाहिए और ये सुनहरा खम्भों को वापस लगाना चाहिए, करेक्ट है ना। यही बोला मैंने कलयुग में, कलयुग में क्या है, दुरुक्ति बोलते हैं संस्कृत में, हार्श वर्ड्स, हमें ऐसे मुंह से कर्कश बोलते हैं ना, कर्कश कर्कश शब्दों को निकालना नहीं चाहिए। एंड बिटर फीलिंग्स, बिटर फीलिंग का मतलब क्या है, हृदय को दुख दुख कर देने वाली बातें कहना करना वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में कलयुग का जमाना ऐसा है। या जैसे अपशकुन दिखाने लगे कलयुग के शुरुआत में, लोग बहुत लोभी बन गए, लोग बहुत क्रोधित हो गए और धोखेबाजी देने लगे लोग ऐसे ऐसे कलयुग के। अगर आपको और पढ़ना हो कलयुग के बारे में 12वें स्कंद में आप पढ़ सकते हैं, कलयुग के सब लक्षण दिए गए हैं कलयुग के। ये युधिष्ठिर महाराज ने देखा है सब, ये परीक्षित आ गए हैं अभी परीक्षित। परीक्षित महाराज को सिंहासन में बिठाया युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बहुत शिक्षित है और योग्य पूर्ण है। सोचकर और अपने राज्य पदवी प्राप्त होने के बाद परीक्षित अपने रथ में आरूढ़ होकर सारे दुनिया में लोगों को जाकर देखने के लिए गए। लेकिन ये इस तरह भ्रमण करने का दूसरा भी कारण बताया गया पिछले अध्याय में, क्यों गए, उनको पता चल गया कि कली आ पहुंचा है कहीं तो, और उनको संदेश मिल गया कि कली लोगों को बिगाड़ रहा है, लोगों के अंदर अवगुणों को फैला रहा है, ऐसे उनको संदेश मिल गया। क्योंकि उस जमाने में राजा लोगों को जासूस लोग लेके आते थे संदेश, उनको प्राप्त हो गया था। तो उन्होंने सोची मैं खुद ही जाकर देखूं क्या चल रहा है मेरे राज्य में, इस तरह सोचकर वो जा रहे हैं। अभी उस समय अनेक लोग आकर परीक्षित महाराज को मिलने के लिए आए, उनकी प्रशंसा की, उनकी दादाजियों की प्रशंसा की, पांडवों की। तब परीक्षित महाराज को प्लगांगित हो गए उसको सुनकर, प्रेमावेश में कृष्ण की स्मरण करते हुए ऐसे। तो एक स्थान में उन्होंने ऐसे देखा, एक बैल और एक गाय को देखा दोनों। तो बैल का तीन पांव किसी ने मार मार कर तोड़ा था, एक ही पांव बचा था वो बैल का। वो बैल कौन है? वो धर्म है, धर्मराज है। धर्म जो है वो बैल का रूप धारण किया है। और गाय कौन है? भूमि है, वो भूमि गाय का रूप धारण किया है। तो भूमाता जो है कभी कभी वो देवी का रूप धारण करती है, कभी वो गाय का रूप धारण करती है। जैसे हम पृथु महाराज की लीला में पढ़ते हैं ऐसे, वो अलग अलग रूप धारण कर सकती है। वो भूमि के अधिपति, भूमि के इसको बोलते हैं प्रिजाइडिंग डेटी बोलते हैं उसको, प्रधान मूर्ति है। तो वो एक गाय के रूप में वो आती है। अभी धर्म और भूमि दोनों एक दूसरे के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं। तो वो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो उधर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि सब लोगों को ये दृश्य दिखाई नहीं दिया उनको, ये भूमि और धर्म की बातचीत जो चल रहा है सब लोग देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए उनकी बात सिर्फ परीक्षित को, क्योंकि उसके लिए सिर्फ पहुंचे हुए लोगों को ही वो दृश्य दिखाई दिया। जैसे आप लोग भी बाहर के मार्केट में जाओ, अगर कोई रजोगुण तमोगुण के उसे अभिभूत होकर उसके व्यवहार चल रहा हो तो बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने गीता भागवत अच्छा पढ़ा है तो आप गीता के दृष्टिकोण से उसको देख पाओगे आप। जैसे हम लोग कैंप मंदिर के निकट वो रोड में जाते हैं, बड़ा शॉपिंग मॉल है, एकदम बड़ा। एक बार परम पूज्य जयदूत महाराज एक कार में थे, तो ऐसे कार से उन्होंने देखा, बड़ा शॉपिंग मॉल देखा। आपने देखा उधर निकट? तो बोले कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, बोल रहे थे। मतलब क्या है ऐश्वर्य का? मतलब बड़ा दुकान, बड़ा पैसा, बड़ा गाड़ी, ऐसे बोल रहे थे। ऐसे चकाचक लोगों को आकर्षित करने के लिए बना कर रखा है। तो ये बोले कि इस तरह की चीज लोगों के मन को चोरी करता है और लोग भगवान को भूल जाते हैं, इस तरह के ऐश्वर्याम से, ऐसे वो बोल रहे थे। इस तरह जिस तरह वो महाराज जी श्लोक बोल रहे थे उस ऐश्वर्याम को देख कर, इसी तरह परीक्षित भी दुनिया के हाल को देख कर वो ये भूमि और धर्म की बातचीत जो चल रहा है वो देख पाए, उनकी आंखों से वो आए उधर। तो इसके बारे में हम लोग पिछले बार पढ़ लिया, अभी हम आगे जाते हैं। तो ये सब देखने के बाद महाराज परीक्षित ने उनको पूछा कि कौन आपको मार रहा है? देखिए कौन, एक व्यक्ति मार रहा है, देखा आपने, बैल को मार रहा है, बैल चिल्ला रही है। देखिए परीक्षित अभी अभी आ रहा है, उधर पहुंच रहा है वो। तो अभी हम इधर से बढ़ेंगे, अभी इस अध्याय में पहला श्लोक है। सुतवाच तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तम च वृषलम ददृशे नृपलांचनम। देखिए तत्र गो मिथुनम राजा, दो मिथुनम मतलब गाय और बैल दोनों को देखा उन्होंने। हन्यमानम अनाथवत, जैसे अनाथ बच्चों को कोई मारता है, इस तरह अनाथ गाय और बैल थे उनको कोई मार रहा था। दंड हस्तम च वृषलम, वृषलम मतलब एक बहुत अधम एक शूद्र व्यक्ति था जो कलिराज था, अपने हाथ में एक गदा लेकर उनके पांव को मार रहा था वो, ऐसे उन्होंने देखा। लेकिन वो राजा जैसे वेशभूष पहना था, वो भी मुकुट पहना था, वो भी एक काला कोट पहना था ऐसे हैं, कपड़ा पहना था, मुकुट भी पहना था, ऐसे कलिराज वेशभूष पहन कर वो मार रहा था इनको। तो प्रभा जी बोलते हैं, तात्पर्य पढ़िए।
कलयुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशंसकों या राजाओं के का वेश धारण करेंगे और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रमाणिक वैश्यों द्वारा आरक्षित होंगी।
देखिए आजकल के वैश्य जो होते हैं वो अगर गाय दूध नहीं देती है तो छोड़ देते हैं उसको गली में, तो कुछ दूसरे लोग उसको पकड़ के लेके आकर मारते हैं, उसको करते हैं ना। तो वैश्य लोग भी उनकी सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे, कलयुग में छोड़ देंगे। और जो राजा लोग हैं, जैसे कभी कभी टेररिस्ट लोग पुलिस के ड्रेस पहन लेते हैं, देखा ना, अपने आप को बचाने के लिए। इस तरह प्रलंबासुर भी एक गोप बालक जैसे आ पहुंचा है ना। इस तरह कुछ मूर्ख लोग, राजा लोग ऐसे कपड़े पहनकर वो इनकी इनको वध करेंगे, इस तरह बताते हैं। तो आगे जाकर प्रभु जी बताते हैं कि गाय और बैल माता और पिता है ना? गाय जो है दूध देती है और बैल खेत जोतती है। आजकल भी ट्रेन में जाते समय हम देखते हैं कुछ कुछ गाँव में कैसे लोग खेत जोतते हैं बैल को लेकर, है ना। क्योंकि अच्छा है कि भारत में सब लोग ज्यादा धनी नहीं है, अगर धनी होंगे तो ट्रैक्टर खरीद लेंगे वो लोग, है तो बैल को लगाते हैं। तो इस तरह गाय और बैल को प्रभा जी आगे लिखेंगे एक तात्पर्य में, उनके मलमूत्र भी बहुत लाभदायक है। जैसे गाय के मूत्र से आजकल कौ यूरिन थेरेपी चालू हो गया है सारे दुनिया में अभी, है ना। इस तरह गोबर को लेकर कितने कितने अलग अलग विषयों के लिए इस्तेमाल करते हैं, धूप बनाते हैं, उसको चूल्हे में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत कुछ दवाई भी मिलता है उससे। तो इस तरह गाय के संबंध में बोला जाए, घंटों घंटे लोग आजकल प्रवचन देते हैं गाय के शरीर में कितना कितना मूल्यवान चीज़ें हैं। लेकिन खास करके भक्तों के लिए गाय की दूध जो होती है उसको पीकर हमारे मस्तिष्क को हम मजबूत बन सकते हैं और बना सकते हैं, और शास्त्र को पढ़ने के लिए हमें एक बुद्धि में तीक्ष्णता प्राप्त होगी, ऐसे प्रभा जी लिखते हैं। क्योंकि ब्रेन टिश्यूज जो है उसको पोषण देता है वो गाय का दूध। लेकिन मूर्ख लोग उस गाय को, गाय के दूध पीकर लाभान्वित होने के बदले उस गाय के गले को काटते हैं, वो शूद्र हैं, ऐसे प्रभा जी खंडन करते हैं उनको। वृषम मृणाल धवलम मेघंतम जीव बिव्यतम वेपमानं पदैकेन सीदंतं शूद्रताडितं। देखिए इधर लिखते हैं कि वो जो बैल था वो एकदम सफेद रंग का था, वो बहुत डर गया था, वो क्योंकि वो मार रहा था उसको, और इतना डर गया था कि वो एक ही पाँव में खड़े होकर ऐसे गिड़गिड़ा रहा था और मूत्र कर रहा था। वो इस तरह लिखते हैं वो बैल के बारे में पहले। तात्पर्य पढ़िए।
कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष तथा श्वेत हैं, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों की संतान हो, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वांग्मय की संस्कृति का अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के।
देखिए प्रभु जी बोलते हैं कि कोई कोई ब्राह्मण के भी बेटे होंगे, क्षत्रियों के बेटे होंगे, लेकिन कलयुग में इतना बिगड़ा हुआ जमाना है कि ब्राह्मण के घर में जन्मे लोग ब्राह्मण की कार्य नहीं करेंगे, वो उनमें ब्राह्मण के गुण नहीं होगा। क्योंकि ब्राह्मण के घर में खानदान में जन्म लेने के बाद भी बच्चे आजकल बिगड़ जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं। आजकल कितने लोग ट्रैवल करते हैं इतना अपने काम के लिए भी, कहीं भी खाते हैं, कहीं भी सोते हैं, फॉरेन में ट्रैवल करते हैं। ब्राह्मण के बच्चे भी आजकल नॉनवेज खाना शुरू हो गया है। मैंने सुना कि वैश्य परिवार में जो लोग जन्मे हैं वो लोग अनेक लोग कृष्ण की पूजा करते हैं और धार्मिक होते थे, पहले दान वगैरह देते थे, आजकल वो भी होटल में जाकर शराब पी रहे हैं। इस तरह बोल रहे हैं कि कलयुग के जमाना की प्रभाव के कारण जो लोग भगवान कृष्ण के आश्रय नहीं लिया है ठीक तरह से वो लोग बिगड़ जाते हैं। इस तरह आगे जाकर प्रभा जी बोलते हैं कि बैल एक पांव में कड़ा है, इसका मतलब क्या है, बाकी एक पांव क्या है, ट्रूथफुलनेस, सत्यपरायणता। कलयुग में जो सत्यवान नहीं है, अगर दो कोई कुटी नाटी करता है तो पकड़ा जाता है। कभी कभी हमें अभी हम सुनते हैं अनेक लोग साधु का वेश पहन कर भी जो लोगों ने डोंगीबाजी की उनको जेल में डाल दिया अभी, है ना। तो कलयुग में कम से कम इतना तक अकल है कुछ लोगों को, हाँ, लेकिन कभी कभी लेकिन बाकी तीन चीज लोग समय उसको तोड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं। आगे तीसरा श्लोक, तीसरा श्लोक बताते हैं कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको, जो दूध गाय के दूध के बारे में बताया गया है उधर, लेकिन कलयुग में बछड़े को अलग कर देते हैं माता से और उसको कत्लखाने में बेचते हैं, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह प्रभुपाद जी इन तात्पर्यों में गाय और बैल के बारे में लिखते हैं इन तात्पर्यों में। आगे जाएंगे हम, पांचवें श्लोक में आइए। परीक्षित पूछ रहे हैं, कस्त्वं मच्चरणे लोके बलात् धम्स्य बलान् बलि नरदेवोऽसि वेषेण नटवत् विजह। ये पूछ रहे हैं कस्त्वं मच्चरणे लोके, ये पूछ रहे कि ए कौन हो तुम, तो तुम दिख रहे हो कि तुम बड़े बलशाली हो और इनको घायल करने के लिए तुम, इनको मारने के लिए तुम तैयार हो। जो जो गाय और बैल दोनों निसहाय बाना से तुमसे मार पीट कर रहे हैं, देखने में तुम बड़े राजा जैसे कपड़े पहने हो, लेकिन तुम्हारे कार्य से पता चलता है कि तुम द्विजबंधु हो, छत्रबंधु हो, कौन हो तुम, ऐसे परीक्षित आकर उनको डांट रहे हैं। किसको, कालीराज को डांट रहे हैं ऐसे। हाँ, इधर डांट रहे हैं, कल देख रहे हैं उसको। या आगे बताते हैं, यस्त्वं कृष्णे गते दूरम सह गांडीव धन्वना शोच्योस्य शोच्यान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि। अरे कृष्ण और अर्जुन, इस दुनिया को छोड़कर अपने स्वधाम लौट गए करके क्या तुम सोच रहे हो कि अभी तुम कुछ भी कर सकते होगी, ऐसे पूछ रहे हैं कि ये जो बोले वाले मासूम गाय और बैल हैं, जो बच्चे जैसे हैं, अगर कोई एक बच्चे को एकांत में लेके जाकर कोई पिटाई करेगा, आजकल किडनैप करते हैं ना, आजकल चाइल्ड लिफ्टर के बारे में बहुत न्यूज़ आता है, कोई चाहे किसी बच्चे को चॉकलेट देकर लेके जाते हैं और कुछ किडनी निकाल देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। इसलिए माँ बाप को बच्चों को साथ में रखना चाहिए हमेशा, कलयुग में खास करके, है ना। तो इस तरह ये पूछ रहे हैं कि ये बच्चे जैसे जो गाय बैल हैं मासूम हैं, उसको ये कि एकांत स्थान में लेके जाकर तुम पिटाई कर रहे हो, मूर्ख, ऐसे उनको डांट रहे हैं। और इसलिए परीक्षित सोच रहे हैं कि तो बैल को पूछ रहे हैं, सातवें श्लोक में पूछ रहे हैं बैल को, हे बैल बताओ तुम कौन हो, तुम इतने साफ हो, सफेद रंग का हो, क्या तुम एक देवता हो क्या, क्यों तुम क्यों तीन ही तीन पांव तोड़ गए, तोड़ा गया है तुम्हारा, ऐसे बैल को पूछ रहे हैं। और बोल रहे हैं कि अगले श्लोक में, आठवें श्लोक में बोल रहे हैं कि इस दुनिया में मेरे राज्य में कुरु वंश में किसी ने भी अपने आंखों से आंसू भूमि के ऊपर बहाया नहीं अभी तक, क्योंकि सब लोग बहुत आनंद में डूब कर रहे हैं हमारे कुरु वंश के जमाने में। लेकिन अभी तुम रो रही हो और तुम्हारे रोने के कारण तुम जमीन में तुम्हारा आंसू गिर रहा है नीचे, बहुत अफसोस की बात है, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, पढ़िए आठवां तात्पर्य।
मनुष्यों तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सबसे पहले और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसी भी सरकार को
रक्षा देना चाहिए, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, किसको भी। आप लोग जानते हैं शिबी चक्रवर्ती का, शिबी चक्रवर्ती राजा ने एक पंछी को आश्रय दिया, लेकिन चील को भी कुछ चाहिए था, अपने मांस को काट कर दिया उन्होंने, है ना। इस तरह सरकार का नियम क्या है, वो मनुष्यों को ही नहीं लेकिन जानवरों को भी सुरक्षा प्रदान करे। देखिए, एक बार भारत के पार्लियामेंट में एक मीटिंग हुआ गोहत्या के संबंध में, तो सब लोग खुश हुए कि इस तरह गोहत्या के बारे में मीटिंग चल रहा है, कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा, हो सकता है सारे गोहत्या को खत्म कर देंगे लोग, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन मीटिंग किस विषय के ऊपर था, कुछ लोगों ने शिकायत लाया था कि ऐसे जो मशीन में काटते हैं ना, वो जो तीक्ष्ण नहीं है वो तलवार, हाँ, वो ना होने के कारण जानवरों को बहुत दर्द होता है। इसलिए मीटिंग का वो लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि अभी एकदम तीक्ष्ण चीज इस्तेमाल करेंगे, ताकि काट 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 करके एकदम जल्दी हो जाएगा काम। ऐसे किया वो लोगों ने। देखिए, उस जमाने में एक दो गाय काटा जाता था इधर उधर, लेकिन आजकल बड़े बड़े मशीन है, हजारों जानवरों को काटते हैं ऐसे। इसलिए बोलते हैं कि इस तरह सरकार के लोगों का कर्तव्य के बारे में बोलते हैं। आगे बढ़िए।
किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार की प्राणियों की सुनियोजित कला देखना भयावह है। महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे, और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना घट रही है। जहां तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित थे, यही ईश्वर के राज की रीति है।
दक्षिण भारत में एक पारी पारी नाम के एक राजा था, वो अपने सोने के रथ में सवार करते हुए जंगल के मार्ग में जा रहा था। एक बार तो उन्होंने देखा कि एक लता ऐसे लटक रही थी हवा में, उसको सहारा नहीं मिली उसको, तो लता ऐसे ऐसे से हिल रही थी सड़क में जाते समय। तो इसको इतना दया भावना आया, अपने रथ को ही उधर खड़ा करके वो लता को लपेट दिया अपने रथ के ऊपर, और वो पैदल चल के आया राज्य में। ऐसे पढ़ते हैं, वो उसकी गुणगान किया जाता है वो पारी की। ऐसे पारी जैसे और भी राजाएं हैं। एक राजा मैंने सुना, वो बहुत ठंडी की मौसम था जंगल में, उसने देखा कि एक मोर ऐसे कांप रहा था इसके कारण, ठंडी के कारण। तो अपने बड़ा ब्लैंकेट जो पहना था उसको निकाल कर चादर को उसके ऊपर डाल दिया है। इस तरह प्राणियों को अपने बच्चे जैसे जानते थे। पितृणाम प्रजा नाम पितृवत्सल ऐसे बोला गया, प्रजा को अपने अपने बेटा कैसे अपने बेटे को मानता है ऐसे मानते थे, ऐसे बताया गया। नवा श्लोक देखिए। मां सौरभे यात्र शुचो व्येतुते वृषलाद् भयम् मा रोदीरम्भ भद्रम् ते खलानाम् मयि शास्त्री। अनुवाद पढ़िए नवा।
हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक ना करो, तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गो माता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा।
उनको अम्ब नाम से पुकारते हैं, मारोदीर अम्ब भद्रम ते। क्यों? क्योंकि गाय भी सात माताओं में एक है, जैसे राजा की पत्नी एक माता है, ब्राह्मण पत्नी एक माता है, भूमि एक माता है, अगर कोई नर्स है अस्पताल में वो भी एक माता है, और धर्म और गाय एक माता है, और कोई माता गुरु पत्नी माता है, कितना हो गया, क्यों गया सातवां, राजपत्नी बोल दिया, खुद की माता भी वो भी एक माता है, सात माता बताए गए। तो इसलिए कोई कोई लड़का बोला कि प्रभु जी मैं अस्पताल गया, उधर कोई यंग लड़की आकर हमारे दांत देख रही है, दांत का रिपेयर करना था उसको, वो डॉक्टर लोग व्हाइट पहनते हैं ना, व्हाइट व्हाइट पहनकर अपरान पहनकर कोई जाकर है, तो वो बोला कि मुझे थोड़ा ये आया मन विचलित हुआ कि कोई तरुण लड़की आकर ऐसे हमारे दान देखती है। मैंने बोला अरे वो तुम्हारी माता है, क्योंकि सात माताओं में एक माता कौन है, नर्स है ना, नर्स को भी माता जैसे देखना चाहिए उनको भी। इसलिए इधर गाय को भी अम्ब नाम से पुकारते हैं, मारो दी अम्ब बद्धमते ऐसे बोलते हैं। देखिए उधर चौथा लाइन पड़ी है, चौथा लाइन सुरभि
सुरभि उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ ग्रहों में रहती हैं और जिन्हें भगवान कृष्ण स्वयं चराते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य भगवान के रूप आकार के अनुसार बनाए गए हैं, उसी तरह सारी गायें वैकुंठ की सुरभि गायों जैसी बनाई गई हैं। भौतिक जगत में
हाँ करेक्ट, आगे जाकर वही पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद जी, भौतिक जगत में इन गायों की रक्षा नहीं है। पुट द पावर कार्ड करेक्ट, वही पॉइंट बताते हैं। हाँ अभी देखिए आगे जाकर अभी 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये इन श्लोकों में परीक्षित योजना बना रहे हैं कैसे कलिराज को खत्म कर देने का योजना बना रहे हैं। इधर अनुवाद पढ़िए दसवां 10-11 अनुवाद, 10-11 अनुवाद पढ़िए।
हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनका उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत दृष्टि व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है।
देखिए कभी कभी अगर कोई बाघ नहीं तो शेर गांव में आ जाता है और गांव में आकर मनुष्यों को भी डराता है। मनुष्य लोग चल नहीं पाते हैं, फिर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि कोई बाघ ढूंढ रहा है खाने के लिए। तो सरकार के लोग एक नियम बनाते हैं कि उसको मार देने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ मैनेटर टाइगर, सुना आपने मैनेटर का मतलब है, किसी मनुष्य को एक बार खाकर उसको उसका रुचि लग गया है, अभी बार बार वो मनुष्यों को ढूंढ रहा है वो, तो सरकार क्या करेगा उसको खत्म कर देगा, शूटिंग कर देगा उसको, ताकि मनुष्य लोग बहुत चिंता रहित जीवन जी सके गांव में। ऐसे आइए उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। इसी तरह समुदाय में समाज में रहने वाले अगर कोई गौ माता की हत्या करता है तो वो भी उस तरह की हत्या के लिए लायक व्यक्ति है, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। इतना वो चोर डकैती लोगों के बराबर ही है ऐसे बताते हैं। तो और प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं कि बाघ शेर वगैरह वो मांस खाना उनके लिए वर्जित नहीं है, क्योंकि बाघ और शेर जो है ना वो गाय की घास के लिए भागते हुए आते नहीं वो, है ना। इस तरह गाय भी कुछ मांस नहीं खाती है, लेकिन मनुष्य दोनों खाना चाहता है, बाघ का भी और गाय का भी दोनों खाना चाहता है, शाकाहारी और मांस, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। इस तरह गाय और बैल की बात अनेक श्लोकों में प्रभुपाद जी ने लिखा है, हम आगे जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण श्लोक आने वाला है अभी इधर। वो इनको पूछ रहे हैं, बैल को पूछ रहे हैं, बताओ किसने तुमको मारा है, वही बात चल रहा है इधर। नाउ यू कम टू 16th verse पढ़िए 16th verse में अनुवाद उसका। सोलहवां अनुवाद पढ़िए, इसके बाद अभी आगे महत्वपूर्ण चीज आने वाला है।
शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के आदेशों से विपत हो जाते हैं उन्हें दंड दे।
देखिए आपद धर्म के बारे में बात आता है इधर। आपद धर्म का मतलब क्या है, एक आपको प्रश्न पूछूंगा, आप लोग जरा सोचिए। अगर आप रेगिस्तान में सफर कर रहे हैं, एक इसके पीछे बैठकर ऊंट के ऊपर बैठकर, अभी आपको
आपके प्रदेश पहुंचने के लिए 3 दिन लग जाएगा, लेकिन भोजन खत्म हो गया आपके पास, कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप बहुत भूखे हैं, और 1 हफ्ता लग जाएगा मान लीजिए आपके बस्ती पहुंचने के लिए, लेकिन आपको एकदम भूख है, लगता है कि आप मर ही जाएंगे आप, लेकिन कोई आपको आमलेट देता है, आमलेट का मतलब जो अंडा से बनाया हुआ अंडा का डोसा, उसको आमलेट बोलते हैं उसको, है? है? ऐसा कोई देता है आपको, है? तो आप में से कितने लोग खाएंगे उसको? कोई खाएंगे? आपको आपको दो ही चीज कर सकते हैं, या तो उसको खाकर जिंदा रहो 1 हफ्ता पानी पीकर, नहीं तो उसको ना खाकर अब मर जाना, वो कर सकते हैं। अभी पूछेंगे भक्तों को कितने लोग खाएंगे उसको। अच्छा आधा लोग खाएंगे, ठीक है। कितने लोग नहीं खाएंगे, मर जाना है? अच्छा है, मर जाएंगे। अच्छा और आधा लोग, अब कितने लोगों को जवाब मालूम नहीं अभी तक? हाँ कुछ मालूम नहीं, और भी चौथे वैरायटी के लोग हैं जो हाथ भी किसी के लिए ऊपर हाथ ऊपर नहीं किया है, है ना? देखिए इसका जवाब क्या है, मेरे शिक्षा गुरु देवामृत प्रभु उन दिनों में बोला उन्होंने, वो बोले कि देखिए आमलेट जो है वो अंडा है, अंडा से बनाया हुआ है, वो जो चिकन से बनाया हुआ है जरूर उसको खाना पाप है, खाना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी इस तरह के परिस्थिति में अगर कोई पड़ गया हो, कभी सुनते हैं ना कभी कभी फ्लड आ गया, कभी कभी ऐसे लोग कुछ आपत की दिशा में आ जाते हैं, आपत काल में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, इधर एक उदाहरण देते हैं तात्पर्य में, विश्वामित्र ने एक बार कुत्ते का मांस खाया था उन्होंने एक आपत परिस्थिति में, लेकिन वो आपत परिस्थिति में करने वाले चीज को हम अक्सर नहीं कर सकते हैं, रेगुलर नहीं कर सकते हैं नियमित रूप से, ऐसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। इसको आपत धर्म का मतलब क्या है, स्पेशल उदाहरण के लिए, अगर कोई आप लोग जानते हैं ना बटालियन में, बटालियन इधर होता है पूना कैंप में, सब सोल्जर को ट्रेनिंग दिया जाता है, उधर एक मंदिर है राधा कृष्ण का, उधर एक पुजारी भी है, तो पुजारी ने बोला कि उसको भी सिखाया गया है गन को कैसे पकड़ना, तो मैंने बोला पुजारी को बोला कि अरे आप तो पूजा करते हो आपको गन पकड़ने क्या जरूरत है, नहीं नहीं इमरजेंसी के लिए रखा है हमको, अचानक कम पड़ गए सोल्जर लोग तो हम भी बंदूक उठाकर भागते हैं युद्धभूमि में, थोड़ा बहुत उनको सिखा कर रखते हैं। जैसे आप लोग घर में कभी कभी अगर फ्यूज चला गया तो कितने लोग जानते हैं फ्यूज डालना, जानते हैं ना, ठीक है ठीक तरह से डालना पड़ेगा आपको, है हाथ रखें तो शॉक लग जाएगा, है तो आप इसका मतलब नहीं कि आप इलेक्ट्रिशियन बन गए आप, है ना, थोड़ा बहुत मालूम है आपको। इस तरह आपत धर्म का मतलब है कुछ आपत के समय हम लोग कुछ छूट दिया गया है, तो मेरे शिक्षक गुरु उन्होंने बोला कि अगर तुम वो आमलेट खाकर 1 हफ्ते के बाद वापस लौटने के बाद भक्ति में जुड़े रहोगे भगवान के भक्ति में तो आमलेट खाने का मतलब है, अगर आमलेट खाकर 1 हफ्ते के बाद आकर कोई इंद्र तृप्ति करेगा अच्छा है कि इंद्र तृप्ति करने के बाद तुम मर ही जाओ खाए बिना उसको, ऐसे बोले, समझा ना। इसलिए हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि खाना खाने के लिए आपत धर्म के समय इस तरह खाने के लिए क्यों छोड़ा है, ताकि एक व्यक्ति अपने शरीर को जिंदा रखकर भगवान की भक्ति में जोड़ सके, उससे क्या होगा भगवत धाम प्राप्त होगा उसको, समझा ना आप लोगों ने। तो आपत धर्म अलग है, नैमित्तिक धर्म अलग है, तो रेगुलर धर्म जो करते हैं वो अलग है, समझा ना, कितने लोगों ने समझ लिया है बात, ठीक है ये बात बताते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी में कुछ कुछ काम हम करते हैं, एक उदाहरण देता हूँ आपको आप समझ जाएंगे। एक बार वृंदावन में मैं सड़क में चलते हुए जा रहा था कृष्ण बलराम मंदिर के वो जो शुक्ला आश्रम की ओर, उस समय ऐसे ही मैं कुछ हरे कृष्ण मंत्र गाते हुए चल रहा था, धीरे से चल रहा था, कोई हमारे पुणे के कांग्रेगेशन भक्त वो सड़क के उस पार था, वो इतना तेजी से भागते हुए आया मेरी ओर, ऐसे मुझे धक्का दिया जोर से, ऐसे धक्का दिया मैं नीचे गिरकर ऐसे लोटपोट गया भूमि में, इतना धूल आ गया मेरे ऊपर, मैंने सोचा कि क्या क्रोध हो गया इतना, मैंने गलत क्या किया, मैंने मैंने कुछ गलत किया क्या, कुछ बोला क्या, मैं तो गा रहा हूँ महा भगवान के नाम, तो मैं ऐसे उठकर इतना पांव दुख रहा था मुझे, धूल को निकाला शरीर से उसकी ओर मुड़कर देखा कि किसने धक्का दिया वो भी मालूम नहीं था मुझे, देखा कि वो पुणे का ही है, वो पुणे के कांग्रेगेशन का कोई भक्त है, तो मैं पूछने वाला था क्या हो गया करके, तो तब उनको पूछने के पहले मुड़कर जब देखा तब भी देखा एक गाय तेजी से भाग रही थी, ऐसे भाग रहे थे तेजी से, क्योंकि हमारे भक्त लोग 30-35 बस से नीचे उतरकर हजारों भक्त आ रहे थे सड़क में, तो वो गाय इतने भक्तों को साथ में देकर डर गई, वो डर के मारे वो भाग रही है तेजी से, लेकिन भागी तो ही जा रही थी। सब भक्त लोग हट गए थे लेकिन मैं हटा नहीं, मैं सड़क के बीच में जा रहा हूँ, मैं तो ऐसे गाते हुए जा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं था गाय भागकर आ रही हो। इतना लगभग 3-4 फुट मेरे पीछे थी वो, भागती हुई आई, वो इतना तेज से भाग रही, वो देख भी नहीं रही है वो, हाँ? हो सकता है कि उसके जांग मेरे पीछे चला जाएगा ना वो, पता नहीं। मैं 6 महीना अस्पताल में रहना पड़ेगा हमको, सब ट्यूब के साथ ऐसा रहना पड़ेगा हमको, है कि नहीं, हाँ? तो ये भक्त, इसलिए उन्होंने भक्त ने क्या किया, मुझे धक्का दिया। इसको आपद धर्म बोलते हैं, उसको आपद धर्म मतलब आपद के समय इस तरह बिहेवियर ठीक है गलत है। कितने लोग बोलते हैं ठीक है, उन्हें जो धक्का दिया ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। कितने लोग बोलते हैं नहीं धक्का नहीं देना, प्रभु वरिष्ठ भक्तों को आदर देना चाहिए, कोई बोलते हैं ऐसे, समझा ना आपने, ऐसे ही बता रहे हैं वो, समझा ना आपने। तो बाद में वो भक्त आकर बड़ा दंडात प्रणाम किया मुझे, वो रोने लगा, वो बोला कि प्रभु जी मेरा बड़ा गलती कर दिया मैंने, आपको धक्का देकर पता नहीं मैं किस नाम के नरक में जाऊंगा, पता नहीं ऐसे। मैंने बोला अरे पछताओ मत, गलत क्या किया तुमने, तुमने बचाया हमको, ऐसे मैंने उनको बोला, समझा ना। ऐसे ही बता रहे हैं, आपद धर्म के बारे में बोल रहे हैं इधर, हाँ। और अभी ये बोल रहा है धर्म 17वें श्लोक में, धर्म उवाच एतत् वह पांडवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः। अनुवाद पढ़िए।
धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशी व्यक्ति के लिए स्वार्थ उपयुक्त हैं, सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुरुओं से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया।
देखिए, ये जो परीक्षित महाराज उनको आश्वासन दे रहा है गाय और बैल को, आप लोग चिंता मत करो, रो मत, मैं आ गया हूँ और मेरे शासन में कोई रोता नहीं और तुम्हारी सुरक्षा प्रदान करना मेरा काम है, इस तरह। और बोलता है परीक्षित, अगर जरूरत पड़े, अगर कोई देवी देवता भी आपको आक्रमण कर रहे हो, हम उनको भी जीतने के लिए सक्षम है, ऐसे बोल रहा है। तो कोई पूछ सकते हैं, अरे देवी देवता को साधारण मनुष्य पराजित कैसे कर पाएगा, कोई पूछेगा ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन एक बार इंद्र और बाकी देवता लोग उनके ऊपर युद्ध की थी, उनको हरा दिया था अर्जुन ने ऐसे, हाँ। इस तरह के पांडव वंश में अनुभव है कि वो लोगों ने देवताओं को भी पराजित कर दिया था ऐसे, इतना शक्ति है। कांड प्रस्थ में जब इंद्र के साथ लड़ाई हुई कृष्ण और अर्जुन का, उसमें अर्जुन ने सब देवताओं को भगा दिया उधर से, इंद्र को भी। इसका मतलब अगर कोई देवता भी तुमको तंग कर रहे हो, बताओ, मैं उनको भी पराजित करने के लिए मैं सक्षम हूँ, ऐसे बता रहा है परीक्षित, हाँ। देखिए, अगर हम किसी को आश्वासन देते हैं उसके लिए हमारे पास क्षमता होनी चाहिए, तभी तो मतलब है कि नहीं, हाँ। अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो हम आश्वासन नहीं दे सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, ट्रेन में जा रहा था वो, हाँ। तो उसका झगड़ा अक्सर होता था ट्रेन के बाकी लोगों के साथ, क्योंकि ट्रेन में थोड़ा धक्का मुक्का होता है ना, लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं, उसके कारण हर दिन कुछ झगड़ा होता था किसी के साथ, हाँ। एक दिन ऐसे ही किसी ने धक्का दिया उसके पास आकर, ये जोर से चला, कौन धक्का दे रहा है मुझे, हे करके वो चिल्लाया। वो तो मुड़कर देखा, उधर एक पहलवान खड़ा था, बड़ा एकदम मोटा लंबा, इतना इतना हाथ था उसका, बड़ा बड़ा हाथ ऐसे है। वो बोला, मैंने धक्का दिया, क्या हो गया अभी, ऐसे पूछा उसने। तो हे बोला, कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही पूछा, ऐसे बोला, क्योंकि शक्ति नहीं था ना उसके पास, अगर उसके साथ झगड़ा करेगा तो एक तमाशा देगा तो क्या होगा उसका, बुरा हाल हो जाएगा, है ना। इसलिए अगर आप आश्रय दे रहे हो किसी को, आश्रय देने के लिए भी क्या चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। इधर परीक्षित के अंदर वो क्षमता थी, वो बता रहे हैं, हाँ? बता रहे हैं, अभी वो बता रहे हैं कि कौन कौन मुझे वो 5 कारण बता रहे हैं। ये थोड़ा फिलोसफिकल पाठ में बोलने वाला नहीं हूँ, इस इधर से लेकर 18 से लेकर 27 तक ये 10 श्लोकों में, इसमें क्या है, इसमें
ये अलग अलग दार्शनिक लोग जो बोलते हैं उसके अनुसार बाइबल बोल रहा है कि हमारा दुख जो बाइबल को पूछा परीक्षित ने सीधा प्रश्न पूछा उनको, हे बाइबल बताओ तुमको दुख कौन दे रहा है बताओ, तो आंसर क्या है बोलिए, कलरा दे रहा है बस। लेकिन बाइबल बोला नहीं, बाइबल क्यों बोला नहीं, क्योंकि धर्म है ना, धर्म होने के कारण अगर आप धार्मिक लोग जो है ना वो हाथ उंगली दिखाकर किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे वो, हाँ कैसे धार्मिक लोग क्या सोचेंगे, अरे मुझे दुख हो रहा है तो मतलब क्या मेरे ही कर्म है जिसके कारण मैं दुख भोग रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे। नहीं तो कोई कुछ बोलेंगे, अरे मेरे ग्रह ठीक नहीं है इसके कारण मुझे दुख आ रहा है, शायद साढ़े सात चल रहा है अभी, हैं इसके कारण हमें दुख हो रहा है, वो उसको हमें कौन क्यों कोसों, ऐसे कुछ लोग बोलेंगे। कोई बोलेंगे अरे मेरे मन ठीक नहीं आज, आज मैं मूड आउट हूँ इसके कारण मुझे दुख हो रहा है, कोई बोल सकता है ना। और कोई बोलेगा कि अरे अभी दुख जो हो रहा है उतना ज़्यादा नहीं है, भगवान जितना मुझे देना है उसके एक टोकन दिया है भगवान ने बस, ऐसे कुछ लोग मान लेते हैं, हाँ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये दुख जो हो रहा है मेरे शुद्धिकरण के लिए हो रहा है, जैसे कभी कभी डॉक्टर लोग दवाई देते हैं थोड़ा कड़वा दवाई होता है, अरे खाना ही पड़ेगा हमको, खाने से तबीयत ठीक हो जाता है इसलिए जो दुख आ रहा है मुझे भोगना चाहिए, इस तरह हम बोलते हैं ना, इससे धर्म भी अलग अलग कारण बता रहा है इसे हाँ। लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण बताएगा वो, सिर्फ हम उस श्लोक को पढ़ेंगे हम हाँ। वो महत्वपूर्ण श्लोक है, अभी ये सब सुनने के बाद 22वां श्लोक आइए, 22वां श्लोक 22। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यत् अधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। ये बोल रहे हैं कि हे धर्म तुम खुद ही धर्म होने के कारण तुम इतना शुद्ध हो तुम्हारा हृदय, तुम किसी में दोषारोपण किसी को दोषारोपण नहीं करते हो हाँ। इस तरह वो बोल रहे हैं कि अभी बैल के साथ बात कर रहे हैं ना हाँ। तुम किसी को दोष नहीं दे रहे हो क्योंकि खुद ही तुम धर्म हो। और दूसरे लाइन में क्या बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी को हाथ उंगली दिखाकर संबोधित करके बोलेगा कि ये मेरे दुखों का कारण है, तभी ये उनका एक नया कर्म सृष्टि हो जाएगा उनका। इसके लिए थोड़ा उदाहरण देने से आप समझेंगे, ये थोड़ा कठिन बात है। ये बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हम लोग कोस रहे हैं कि इसने मुझे दुख दिया, उसको जो दंड मिलेगा वही आपको भी मिलेगा, वही दंड, ऐसे बता रहे हैं। यद अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। मैं आपको समझाता हूँ ये उदाहरण के द्वारा आप समझेंगे। एक बार यात्रा में एक पेड़ के नीचे दो भक्त बैठे थे, तो एक भक्त बोला हे जाकर मुझे एक प्रसाद प्लेट लेके आओ, अभी 2:30 बज गया तो मैं प्रसाद नहीं लिया, हम लोग बात करते करते टाइम निकल गया हा? जाओ प्रसाद लेके आओ मुझे, वो थोड़ा वरिष्ठ था वो। तो एक व्यक्ति एक छोटा भक्त जाकर प्रसाद प्लेट लेकर आया, आकर इसके हाथ में दिया, प्रभु जी आप ले लीजिए। तुरंत इन्होंने देखा कि स्वीट नहीं है उधर, वो बोला कि अरे चपाती लाया है, राइस लाया है, दाल लाया है, सब्जी है, स्वीट किधर है, यू नो। वो बोला कि प्रभु जी स्वीट दिखाई नहीं दिया प्रभु जी उधर, बोला वो बोला दिखाई नहीं दिया तो अंदर रखा होगा स्पेशल हाँ, कुछ तो एक दो बकेट रखते हैं अंदर बाकी भक्तों के लिए हाँ, क्योंकि अभी टाइम हो गया ना, 2 बजे बंद कर दिया, अंदर जाकर देखो बोलो कि मेरे लिए चाहिए लेके आओ। तो अंदर गया, देखा कि एक बकेट था स्वीट राइस था हाँ, तो एक द्रोण में ले लिया, लेके आया वो भक्त को देने के लिए। ऐसे भक्त भागते हुए आया, एकदम निकट आया, एक ये पेड़ से उतना दूरी था, तो अचानक उनके हाथ से वो स्वीट राइस का द्रोण ऐसे नीचे गिर गया, ऐसे उल्टा हो गया, नीचे गिर गया, भूमि में गिर गया ऐसे। तो ये भक्त बहुत कुपित हो गया, ये उसको चिल्लाया उसको, अरे मूर्ख सावधानी से लेके आना चाहिए, इतना भाग दौड़ की क्या जरूरत है, भागते हुए तुम आया, उसको उल्टा कर दिया, नीचे डाल दिया, पूरा मिट्टी में गया पूरा, उसको डांटा। तो बोला ठीक है वापिस चलो लेके आओ, स्वेटर एक द्रोण लेके, लेकिन सावधानी से लाओ, इतना जल्दीबाजी की जरूरत नहीं। तो वो भक्त बाकर गया, लेकिन वो पता नहीं वो बकेट गायब हो गया, वो तो नहीं था, वो लगता कि कोई भक्त लोग लेके गए, उसको मिला नहीं। उसको वापस आकर बोले सारी प्रभु जी मिला नहीं, अभी खत्म हो गया, अंदर भी खत्म हो गया, बोला अभी इसका क्रोध दुगना हो गया, अभी अंदर भी खत्म, ये भी मिट्टी में डाल दिया, अभी मैं क्या कहूँगा अभी, अभी ऐसे बोला। वो बोला सारी प्रभु जी, अरे तो ये भक्त ने बोला कि तुम सामने मत रहो, निकल जाओ इधर से, तुमको देखते ही और क्रोध आ रहा है, और निकल गया वो भक्त। लेकिन उसके फ्रेंड ने क्या बोला उसको, देखो हमारे जीवन में हरेक को भगवान जितना देना है उतना ही देते हैं। आप लोगों ने सुना है ना, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जितना जमा कराया उतना ही वो पाता। अरे तुम्हारे तकदीर में जो लिखा है आज खाने के लिए वही तुमको मिलेगा। आज तुमको स्वीटरेस नहीं मिलना था, इसलिए पहली बार वो जब लेके आया प्लेट उसमें स्वीटरेस था क्या? भगवान ने सही ढंग से भेजा तुमको स्वीटरेस के बिना, लेकिन तुम हट करके लिया तुमने, इसलिए वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद भी हट करके वापस भेजा तुमने उसको, तभी उधर वो गायब हो गया वो बाल्टी। इसका मतलब क्या, भगवान ने अंततोगत्वा तुमको समझा दिया कि तुम अयोग्य हो आज खाने के लिए स्वीट राइस, है ना। और दाने दाने पे लिखा है वो, उसने बोला दाने दाने पे लिखा है चींटी का नाम, क्योंकि चींटी खा रहे हैं अभी वो स्वीट राइस। अभी चींटियों के लिए है आज, तुमको तकदीर में लिखा नहीं है, छोड़ दो, भूल जाओ उसको, तुम क्यों हट करते हो इस तरह, ऐसे बोला। समझे ना आप लोगों ने, अगर तुम उस उंगली दिखाकर उस भक्त को डांटोगे कि तुमने नीचे डाल दिया उसको, इससे क्या होता है, तुमको तुम्हारा कर्म नया कर्म निर्माण हो जाएगा इसके कारण, क्योंकि अभी आपको नहीं मिल रहा है पूर्व कर्म के कारण। लेकिन किसी को हाथ दिखाकर हमें दोषारोपण करने से, वो दोषारोपण के कारण नया कुछ बुरा कर्म सृष्टि हो जाएगा। समझा ना आप लोगों ने, देखिए ये समझने की बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बार ऐसे ही किचन में एक भक्त ऐसे जा रहा था, दूसरे भक्त ऐसे आ रहा था, वो बाल्टी पकड़ कर आ रहा था, ऐसे वो भक्त ऐसे आते 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 निकट आए, उसका बाल्टी इसके घुटने के ऊपर ऐसे टोक दिया उसको, हा करके चला है, दोनों नीचे गिर पड़े। घुटने के बाद इसको घुटनी में खून निकलने लगा इसको थोड़ा, तुरंत वो दूसरा भक्त भागा, टिंजर लेके आया, लगाया, मलम पट्टी वगैरह किया सब उसको। और ये भक्त वो पट्टी वगैरह लगाने के बाद बोल रहा, अरे क्या मूर्ख अंधा हो क्या तुम, आंख भगवान ने आंख दिया ना तुमको, मैं इधर से आ रहा हूँ तुम इधर आ रहे हो, थोड़ा बाज में जाना चाहिए, ऐसे बाल्टी के लेके ठोक करके ठोक रहे हो तुम मेरे ऊपर। वो बोल रहा है प्रभु जी ठोकना नहीं था प्रभु जी मुझे। अरे ठोकना नहीं था क्यों ठोका बताओ, पता नहीं मुझे हो गया प्रभु जी। अरे कैसे हो सकता है, तुम्हारी इच्छा के बिना कैसे हो सकता है, बोल रहा है। लेकिन देखिए आप लोग समझेंगे, अपने जीवन में भी जब गाँव होता है क्या कोई जानबूझकर आपको मारता है क्या कोई, इसलिए बता रहे हैं पर ये धर्म बता रहे हैं, परीक्षित बता रहे हैं कि हे धर्म तुम जानते हो कि इस दुनिया में होने वाले दुख जो है ना अलग अलग कारणों से होता है, हमारे पूर्व जन्म के गलत कर्मों के कारण होता है, अलग अलग कारण से होता है, इसलिए तुम कलिराज को हाथ दिखा नहीं रहे हो। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं आते समय मैंने खुद ही देखा कि कलिराज पिटाई कर रहा था तुमको, इसलिए मैं उसको सही दंड दूंगा करके बोला। अभी तक मैंने जो बोला कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात, समझ आ गया ना, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज है। तो आप हम लोग क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में अगर कोई दुख दे रहा है तो तुरंत उनको उंगली दिखाना चाहिए। अभी पति बोल रहा है पत्नी को, जब से मैंने तुमसे शादी किया मुझे शांति चला गया, ऐसे बोलता है। और पत्नी बोलते है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वो भी बोल रहे है। लेकिन ऐसे कोसने से क्या हमारा बुरा कर्म बढ़ेगा, और पत्नी कारण नहीं, बच्चे कारण नहीं, बाकी लोग कारण नहीं, हम खुद ही कारण है। जैसे अगर कभी कभी आपका जिह्वा को आपके दांत काट लेता है, देखा आपने, बोलते बोलते काट लेता है, अभी क्या दांत को तोड़ दोगे आप, तोड़ने से लाभ होगा आपको? इस तरह कभी कभी हमारे कर्म के कारण ही हम दुख भोगते हैं, दूसरों को कोसना नहीं, ये बात सिखाते हैं, महत्वपूर्ण चीज है सीखने के लिए। गजेंद्र के पांव को जब एक मगरमच्छ ने पकड़ा जोर से, जब गजेंद्र रो रहा था, लेकिन वो क्या बोला, सर्वप्रथम उसके मन में विचार आया, हे भगवान पूर्व जन्म में मैंने पता नहीं क्या गलती किया मैंने, जिसके कारण अभी मैं दुख भोग रहा हूँ, ऐसे बोला उसने। उसने मगरमच्छ को कोसा नहीं, तत्क्षण भगवान की कृपा आ गया उसके ऊपर, तुरंत स्मरणाशक्ति दे दिया भगवान ने उनको, और विविध अच्छे अच्छे प्रार्थना किया गजेंद्र मोक्ष नाम से, प्रार्थना करके भगवान के दर्शन पाकर वैकुंठ धाम प्राप्त हुए उसको। इसलिए पहला चीज गजेंद्र ने क्या किया, दूसरों को कोसा नहीं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे गलती कैसे हुआ, सब लोग ऐसे दिखाते हैं उसने किया होगा इसने किया होगा, कुछ अच्छा ही हुआ अरे अच्छा ही किसने किया हमने किया, ऐसे करते हैं लोग, है ना। अच्छा ही हुआ तो अपना कॉलर ऊपर उठाते हैं, गलती हो गया तो ऐसे दिखाते हैं लोग, है ना। ये बात सीखते हैं हम लोग इधर, है तो इस तरह आगे जाकर अभी महत्वपूर्ण भाग आ रहा है इधर। ट्वेंटी फोर्थ श्लोक तपश्चौचं दया सत्यं इति पादाः कृते कृताः अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मय संगमदैस्तव। देखिए ये महत्वपूर्ण श्लोक तात्पर्य है, मैं सब भक्तों से विनती करूंगा कि आप ध्यान पूर्वक सुनिए इस अनुवाद और तात्पर्य को, क्योंकि इसमें ये सारे अध्याय का सारांश इस श्लोक में है। या प्लीज रीड।
सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या पवित्रता दया तथा सच्चाई के चार नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार काम वासना तथा नशे के रूप में स्वतंत्र सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके हैं।
तात्पर्य पढ़े, तात्पर्य वेरी इंपॉर्टेंट तात्पर्य।
भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। पतिंगे प्रकाश के चमक से आकृष्ट होते हैं और इस तरह वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगिनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह के अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार ना बने अपितु इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद
अभी तक एक ही पॉइंट बताया गया, अभी तक क्या है, ये मायावी दुनिया है। इस मायावी दुनिया में हम लोग भटक रहे हैं विविध कार्यों को करते हुए सुख प्राप्त करने के लिए, सुख की तलाश में। लेकिन सुख की तलाश में हम लोग माया ग्रस्त मोहित मोहग्रस्त होकर विविध कुकर्म को करके और अनेक कुकर्म के फलों को इकट्ठा करके विविध व्याधि विविध तकलीफ हम भोग रहे हैं, ये पहले बताया जा रहा है। क्योंकि माया जो है इस दुनिया में बहुत आकर्षक होती है, जिस तरह भगवान कृष्ण आकर्षक है माया भी आकर्षक है। लेकिन फर्क क्या है, कृष्ण से आकर्षित होने से हम वैकुंठ लौटते हैं, लेकिन माया से आकर्षित होने से हम बंधे जाते हैं इस दुनिया में, है कि नहीं। जैसे एक चूहा है, एक रैट ट्रैप मालूम है आपको, एक चूहे को पकड़ने के लिए एक पिंजरा होता है, उसमें एक कभी कभी कुछ नारियल को लटका कर रखते हैं उसमें, नहीं तो कुछ लड्डू किसी को लटका कर रखते हैं। उसको देखकर ये चूहा क्या करता है, अंदर प्रवेश कर लेता है, उसको पकड़कर जब खींचता है नीचे बंधे जाता है वो, है। इस तरह भौतिक दुनिया में माया के अनेक प्रलोभन हैं जीव के लिए, पांच प्रलोभन हैं, शब्द स्पर्श रस रूप गंध। आंखों के लिए सुंदर रूप है, जैसे मैंने पढ़ा इधर शिवाजीनगर में कोई व्यक्ति शादी किया था, शादी करके उसके पत्नी के 8 महीने में प्रीमेच्योर चाइल्ड पैदा हो गया, बच्चा भी, बच्चे तो 9 महीने में पैदा होते हैं ना, 8 महीने में पैदा हो गया वो, तो माता और बच्चा दोनों थे उसके, आई मीन उसके वाइफ और बच्चा था उसके, लेकिन इसका किसी और स्त्री के साथ लफड़ा था इसका, तो ये इसने सोचा कि अभी वो लड़की के साथ लफड़ा है तो उसके साथ अगर हम शांति से जीना चाहें तो ये अभी बीवी है बच्चा है इसको कौन संभालेगा करके उसको विष पिलाकर मार दिया दोनों को।
लेकिन ये जब पकड़ा गया है एक व्यक्ति, इस व्यक्ति को 27 साल जेल वास दिया गया है और उस लड़की सोनाली उसको 22 साल दिया है। अच्छा है ना, तभी बाकी लोग कोई नहीं करेगा अभी है? उसको देखकर एक बंदर को लटकाओ बाकी समझ जाएंगे, है ना। तो बोलेंगे मतलब क्या है, अभी देखिए बीबी है, बच्चे हैं, भगवान ने सिस्टम बनाया है बीबी बच्चों के साथ शांति से जियो है? लेकिन जीव देखिए मूर्ख जीव अवैध स्त्री संग करना चाहता है वो है? अपने बीबी बच्चों को छोड़कर किसी और को देखता है, किसी और के साथ जाना चाहता है, इसके कारण अभी बड़ा दंड खा रहे हैं दोनों अभी है? तो रोमांस कर रहे थे, अभी जेल एरवाड़ा में डाल दिया उनको भी है? तो अभी एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको, इस तरह आप लोग समझ सकते हैं शब्द स्पर्श रस रूप गंध। अभी खाने के लिए क्या क्या खा सकता है क्या नहीं खा सकते हैं भगवान ने सही ढंग से बोल कर रखा है, फिर भी बद्र जी इच्छा करता है कुछ भी खाने के लिए है? किसी जैसे मैं काली के दुर्गा माता के मंदिर में जाता था जब स्कूल के दिनों में था, एक दिन गया था सड़क में रोड में आता था साइड में आता था, एक दिन गया था देखा उधर इतने सैकड़ों चिकन को काटा था वो लोग हवा जा रहा था पूरा इधर उधर इधर उधर काट रहे थे, वही लास्ट दिन था हमको कभी नहीं गए उधर। उसके बाद डर गए हम उसको देख कर ऐसे, तो अमावस्या दिन ऐसे कुछ काटते हैं वो लोग ऐसे। तो जीव जो है जीव का जिह्वा बहुत लंबा होता है अलग अलग चीज़ों को खाने के लिए। कभी कभी देखे चिकन को जो गाड़ी में लेके जाते हैं, आप लोगों ने देखा है ना किस किस बंद करके रहते हैं इतने इतने छोटे इसमें बेचारे वो पंछियों को वो चिकन को ऐसे हम कितना उनको दुख देते हैं पर जीवों क्लेश देते हैं। तो इसलिए एक इंसान को कैसे हम जीवन जिए पर जीवों को क्लेश ना देते हुए ये देखना चाहिए। तो शब्द स्पर्श रस रूप गंध ये पांचों चीजों में, लेकिन माया के प्रलोभन के कारण इस दुनिया में लोग ये पांचों विषयों में गलतियां करते हैं लोग है? इसलिए बताते हैं प्रभुपाद जी मामे वे क्या श्लोक है वो दैवी की ऐसा गुणमयी हम माया दुरत्यया। भगवान बोल रहे हैं कि माया की चमत्कार चमक दमक को देखकर इंसान बिगड़ जाता है, गलत पथ में चला जाता है। लेकिन आगे बताते हैं प्रभु जी पढ़िए आगे।
वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में न जाकर प्रकाश के पथ पर अग्रसर हों। भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगिनी शक्ति
आप लोग सुना है ना, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, है ना। इस तरह हम लोग मृत्यु रूपी दुनिया इस दुनिया को छोड़कर अमृत रूपी वैकुंठ में जाना चाहिए है? इस तरह से तमस का मतलब अंधकार और अज्ञानता रूपी इस दुनिया को छोड़कर हमें उस वैकुंठ में जाना चाहिए जिधर सब लोग दिव्य ज्ञान से भरे हैं ऐसे। और असत जो शरीर है असत है टेम्पररी है क्षणभंगुर है उसको छोड़कर शाश्वत शरीर प्राप्त करना चाहिए वैकुंठ में है? वो बताकर आगे बताते हैं कि भगवान खुद भी बोलते हैं गीता में क्या बोलते हैं पढ़िए
कि माया की ठगिनी शक्ति को जितना अत्यंत दुष्कर है किंतु पूरी तरह जो भगवान के शरण में चला जाता है वह सरलता से इसको जीत सकता है।
लेकिन भगवान खुद ही बोलते हैं अरे मेरे शरण में आ जाओ बेटा तुमको तुम माया से बच जाओगे आसानी से। इसका मतलब क्या है, तुम देश के विधि विधानों को पालन करो एरवाड़ा जेल में जाना नहीं पड़ेगा आपको है? ऐसे जैसे अगर आप सड़क में चल रहे हो दूसरी ओर पुलिस आ रहा है क्या आपको डर होता है? नहीं होता। डर किसको होता है? चोर को होता है। चोर लोग बात करते हैं देखो देखो पुलिस आ रहा है अभी मुड़ कर दो भागते हैं वो है ना। इस तरह माया आती है भक्तों को डर नहीं है माया से। क्यों? क्योंकि भक्त लोग जानते हैं कि मैं भगवान का शरण लिया हूँ है ना। भगवान की शरण लेने से हम माया से बच सकते हैं भगवान खुद बोलते हैं। जैसे प्रभुपाद ने एक बार दिखाया एक छोटा कीड़ा था समुद्र के निकट है? तो ब्रह्मानंद प्रभु को बोला उन्होंने प्रभुपाद जी ने पकड़ो उसको। तो ब्रह्मानंद प्रभु एकदम अट्टे कट्टे थे मोटे थे लंबे थे है? पकड़ने के लिए गए लेकिन वो जो कीड़ा था वो केकड़ा था वो छोटा केकड़ा था वो समुद्र के अंदर गया हो तो पकड़ नहीं पाए उसको। तो वापिस आकर बोले प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी पकड़ नहीं पाया अंदर चला गया हो। प्रभुपाद जी हंस पड़े देखो तुम कितना बड़ा हो तुम वो कितना छोटा है लेकिन पकड़ नहीं पाए तुम। और प्रभुपाद जी आगे बोले देखो क्योंकि वो समुद्र का आश्रय लिया है, वो कृष्ण भी समुद्र जैसे हैं, उनका आश्रय अगर कोई लेगा तो माया पकड़ नहीं पाएगा उनको, ऐसे प्रभुपाद जी ने उधर से एक निष्कर्ष निकाला। इस तरह से वही बताते हैं, लेकिन समस्या क्या है, भगवान को शरण जाना भी आसान नहीं है बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। पढ़िए आगे,
लेकिन भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं है। ऐसी शरण को
अगर आपको शरण लेना हो, स्वलमला करना पड़ेगा रोज, चार नियम पालन करना पड़ेगा, प्रसाद ही खाना है, बाकी कुछ नहीं खाएंगे कहीं भी आप, साथ साथ अभक्तों से दूर रहना है आपको, और सब लोग सिनेमा भाग रहे हैं, सिनेमा घर नहीं जाना है, और इस तरह अलग अलग लोग इस दुनिया में कुछ कुछ चीज़ कर रहे हैं जो वर्जित है, वो सब हमको भी छोड़ना पड़ेगा हमको। तो कभी कभी भक्त लोग भक्ति में आते समय शुरुआत में उत्साही होते हैं, कुछ समय के बाद उनको लगता है कि अरे मेरे फ्रेंड सब कुछ करते हैं, तो एक भक्त बोल रहा था अरे क्या प्रभु जी कलयुग का जमाना आ गया, सब लोग करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, अरे सब लोग लात खाने वाले हैं, तुमको लात खाना है क्या, है ना। तो अगर जरा सोचिए, अगर ये बारिश हो रहा है अभी, अगर बारिश अब होता है उसमें अगर एसिड के साथ बारिश होता है बाहर, कोई भी जाता है एसिड शरीर में घाव पैदा करते हैं, अगर सब लोग ऐसे भाग रहे हैं उस बारिश में, आपको भी बाहर जाना हो आप क्या करेंगे, छतरी पकड़ेंगे ना, छतरी लेकर जाएंगे ताकि बारिश का इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े। इस तरह कलयुग के जमाने में कलयुग का इफेक्ट सब लोगों के ऊपर पड़ रहा है, अगर हमारे ऊपर नहीं पड़ना तो हमें इस्कान का छतरी चाहिए हमको, हमें गुरु का आश्रय की छतरी चाहिए। अगर हम बोलेंगे अरे सब लोगों को सब लोग भाग रहे हैं छतरी के बिना, मैं भी ऐसे ही भागूंगा, तो हमारे शरीर में घाव हो जाएगा पूरा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बाकी लोग जो भी करे आध्यात्मिक पथ में भी चले। जैसे एक लड़का पूछा मुझे, प्रभु जी आपसे एक ही 1 सेकंड चाहिए आपका, बस एक छोटा प्रश्न मैं पूछूंगा, आप यस बोल दो बस मैं रख दूंगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बोला उसने। मैंने बोला ठीक है लेकिन प्रश्न तो बोलो पहले, हैं प्रश्न क्या है। प्रभु जी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ प्रभु जी, फिर भी मेरे सीनियर ने बोला आपसे पूछने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात, आप हाँ बोल दीजिए बस मैं रख देता हूँ। अरे प्रश्न क्या बोलो, प्रश्न इतना है जी, परीक्षा में कॉपी कर सकते हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, परीक्षा में थोड़ा कॉपी करने की इच्छा है मुझे। आप यस बोलेंगे तो आगे बात नहीं करूंगा, बोला। मैंने बोला यस कैसे बोल सकता हूँ मैं, अरे कॉपी करने से तुमको डिबार कर देंगे तुमको, तुम ऐसा काम क्यों करना चाहते हो, थोड़ी सब लोग कॉपी कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसे बोला उसने। अच्छा सब लोग कर रहे हैं, तुम 100 लोग में 99 लोग कर रहे हैं तुमको छोड़कर, ऐसा नहीं प्रभु जी, 99 लोग 500 लोग कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसे बोला उसने। अरे 100 लोग में 500 लोग कर रहे हैं तो उनको वो पकड़े जाएंगे तो दंड मिलेगा। अरे प्रभु जी हमेशा पकड़े नहीं जाते हैं, वो 10 में भी 2-3 लोग पकड़े जाते हैं, बाकी लोग बच जाते हैं प्रभु जी, मैं भी वो जैसे बनना चाहता हूँ, सावधानी से कॉपी करूंगा लेकिन पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो मैंने बोला देखो तुम भगवान के भक्त हो, शोभा नहीं देता तुम्हारी है, अगर तुम करोगे तो लोग बोलेंगे हरे कृष्ण वाले कर कॉपी करते हैं बोलेंगे लोग, भगवान का भी बदनाम होगा तुम्हारे से, ऐसे बोला। तो मैंने क्यों बोला, कलयुग में आप लोगों को देखने को मिलेगा लोग कुछ भी करेंगे लेकिन हम उनका नकल नहीं करना चाहिए, अगर हम उनके बदमाश लोगों की नकल ही करेंगे तो उनका अधोगति जो प्राप्त होता है हमको भी वही गति प्राप्त होगा। इसलिए इधर बताते हैं कि भगवान के विधि विधानों को पालन करना भी आसान नहीं है, थोड़ा बहुत कठिनता है उसमें भी, क्योंकि खास करके गृहस्थ भक्त लोग आप लोग दुनिया में भी आपका जिम्मेदारियाँ हैं, भगवान की भी जिम्मेदारी है, दोनों को साथ साथ लेके जाने में सावधानी को अपनाना पड़ेगा। यह गृहस्थ भक्त था, वो मुझे फ़ोन करके पूछा कि प्रभु जी मेरे पास 5 टेंडर आए हैं, तो एक टेंडर मैं पास करूंगा वो आदमी सिर्फ मुझे 10,000 रुपया देगा, दूसरा टेंडर पास करूंगा तो वो 50,000 रुपये देगा वो मुझे, अगर और एक टेंडर है 5 में वो पास करूंगा तो 1,00,000 मिल जाएगा मुझे। लेकिन समस्या क्या है, वो 1,00,000 मुझे मिलेगा मेरे पॉकेट के लिए, लेकिन कंपनी के लिए बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कंपनी के लिए नुकसान नहीं होगा तो वो 1,00,000 मुझे कैसे देगा, समझा ना आप लोगों ने ये बात। मैं सोच रहा हूँ प्रभु जी अगर 1,00,000 का मैं पास करूँगा ना तो पैसा मिल जाएगा मुझे,
तो इस तरह का मैं जल्दी कमा लूंगा प्रभु जी, 4-5 साल में इतना पैसा कमा लूंगा, सब छोड़कर हम भगवान के फुल टाइम भक्त बन जाएंगे, हम बीवी बच्ची बच्ची का भी शादी हो जाएगा एक दो साल में, उसके बाद मैं पूरा समय टाइम दे सकता हूँ। मैंने बोला देखो अगर 1 लाख का तुम धोखेबाजी करोगे इस तरह से, तुम पकड़े जाओगे तो क्या करेंगे? अरे पकड़ा जाऊंगा तो उसे निकाल देंगे कंपनी से, ब्लैक मार्क कर देंगे, हमको निकाल देंगे। तो इस तरह का कुकर्म तुम क्यों करना चाहते हो, मैंने पूछा। वो बोल रहा है ठीक है प्रभु जी, मैं 1 लाख कमा लेता हूँ, 20,000 आपको भी दे देता हूँ। फायदा बोलता हमको भी एक प्रलोभन दे रहा है हमको। मैंने बोला देखो तुम मुझे पैसा दे घूस देकर गलत बात मेरे मुँह से निकाल नहीं पाओगे तुम। तो मैंने बोला देखो तुम भक्त हो, सही ढंग से कमाओ, भक्तों को प्रामाणिकता से कमाना चाहिए। इस तरह से धोखेबाजी दोगे ना तुमको रात को नींद नहीं आएगा तुमको, क्योंकि डर होगा कि कभी भी पकड़े जाओगे। तो नींद ना होने के कारण तुमको स्लीपिंग पिल खाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाकर पूरा खर्चा हो जाएगा 1 लाख हमारा। तो इस तरह मैंने क्या बोला, भक्तों को भी कभी कभी प्रलोभन हो सकता है बाहर के लोगों को देख कर एक कलयुग में, लेकिन ये 4 चीजों को तोड़ने से क्या होता है, भक्त लोग भी दूषित हो जाएंगे उससे, समझना आपने। तो इसलिए सावधानी रखना चाहिए भक्तों को। आगे पढ़िए, इधर एक महत्वपूर्ण चीज बोलने वाले हैं प्रभा जी अभी।
ऐसी शरण तो तपस्या पवित्रता तथा सत्य दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है।
हाँ, भगवान को शरण जाना उन लोगों के लिए आसानी हो जाएगा जो लोग ये 4 नियम को पालन करते हैं। क्या क्या है पढ़िए।
उन्नत सभ्यता के ये 4 नियम सत्य युग के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। संस्कृति के आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति जो व्यक्ति अपने को माया के पास से दूर रखने में सक्षम थे।
ये बात है महत्वपूर्ण बात, चरित्रवान लोग माया से बच जाएंगे। चरित्रवान होने के लिए 4 चीज हमको फॉलो करना है। क्या क्या 4 विषय बोलिए, क्या क्या है?
लेकिन
नहीं नहीं, 4-4 क्या है, आपको कुछ है आपके लिए।
अच्छा,
पता है ना 4 चीज क्या क्या, 4 चीज करने से हम चरित्रवान बनते हैं।
मीन्स ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस।
इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बोलना, सब बच्चों में हिंदी में बोलना, मैं इतना मुश्किल तकलीफ देकर हिंदी में बोल रहा हूँ, सबका समझाना हिंदी में बोलिए।
तपस्या, स्वच्छता,
उधर क्या लिखा है,
सत्य,
सत्य,
सत्य, अहिंसा,
सत्य, दया, स्वच्छता और
तपस्या।
हाँ, ये 4 चीज को जो फॉलो करते हैं उनके लिए वो चरित्रवान बनते हैं। चरित्रवान जो बनता है वो आसानी से माया से बच सकता है और कृष्ण के आश्रय ले सकता है। ये एक सीक्रेट मिल गया हमको इधर से, ये तात्पर्य से बड़ा परम रहस्य है। तो इसका मतलब क्या, ऑस्टेरिटी, तपस्या के बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो 17वां अध्याय पढ़िए भगवद गीता के, 17वां अध्याय के 14, 15, 16 3 श्लोक उधर तपस्या के, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या, वाक 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 तपस्या, वाचिक तपस्या, 3 तरीके के तपस्या दिए गए हैं उधर। और शुद्धता, बाहर की शुद्धता के लिए नहाते हैं, अंदर की शुद्धता के लिए नाम जप करते हैं, और अवैध संग को त्यागने से शुद्धता बढ़ता है। और क्योंकि ये स्त्री पुरुष का मैथुन जीवन जो है वो बहुत गंदा चीज है, लेकिन पति पत्नी साथ में आकर एक बच्चे पैदा करके बच्चे को जब कृष्ण बारामत में आगे बढ़ाते हैं वो उपयुक्त माना गया है, वो धार्मिक है, वो शास्त्र बताते हैं ऐसे। लेकिन इस धार्मिक चीज को छोड़कर अगर किसी भी ऐसे अजामिल ब्राह्मण के परिवार में जन्म आता, लेकिन एक वेश्या को घर में लेके आकर उसके साथ अवैध स्त्री संग करके 10 बच्चे पैदा किया उसने, कितने गंदे गंदे काम हुआ है, इसलिए गंदा हो जाता है कोई व्यक्ति उससे। इसे शुद्ध रहने के लिए सब स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए अपने पत्नी को छोड़कर। और शारीरिक रूप से नहाना चाहिए नियमित रूप से और अंदर नाम जपना चाहिए, शुद्धता आता है। दया के लिए क्या करना चाहिए हमको, परजीवों को क्लेश नहीं देना चाहिए, वो बात बोला हमने। अहिंसा और सत्यपरायणता का मतलब है जो हम पढ़े हैं शास्त्र से वही बताना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब चीज कभी कभी हम झूठ बोलते हैं अपने बारे में ताकि लोग हमारे बारे में बहुत बड़ा बड़ा चलाकर बड़े माने अपने आप को, इस तरह। तो ये चार चीज को फॉलो कीजिए, फॉलो करने से हम चरित्रवान बनेंगे। चरित्रवान जो बनते हैं वो लोग माया से बच जाते हैं। आगे पढ़िए।
लेकिन धीरे धीरे जो जो ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, काम वासना तथा नशे में अनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, त्यों त्यों मनुष्यों का मोक्ष का मार्ग या तो दिव्य आनंद के मार्ग मानव समाज से दूर और दूर होता चला गया। कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं।
हाँ, ये बहुत बड़ा दुर्गुण बढ़ रहा है कलयुग में, अहंकारी। जैसे प्रभुजी बोलते हैं उस जमाने में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति ट्रेन में बस में आता है, कोई छोटा लड़का सिगरेट पी रहा हो, उनको देखते ही तुरंत फेंक देगा उसको, समझेगा कि कोई वृद्ध व्यक्ति आया है, जो हमारे से वरिष्ठ हैं उनको आदर देना चाहिए, उनके सामने फूंकना अच्छा नहीं है। तो आजकल भी ट्रेन में नियम है कि कोई सिगरेट फूंक नहीं सकता है, मालूम है आपको? कुछ लोग अंदर बाथरूम में जाकर फूंक कर आते हैं, देखा ना आपने? वो तो इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक्सीडेंट हो सकता है, फायर एक्सीडेंट, ऐसे लिखा है। फिर भी लोग फूंकते हैं, देखते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में लोग बूढ़े लोगों के चेहरे के ऊपर ही फूंकते हैं, देख सकते हैं, कुछ आदर नहीं है। इस तरह के लड़का लड़कियां बहुत निकट आकर बाइक में जाते हैं, ऐसे बर्ताव करते हैं, कुछ भी शर्म नहीं है सबके सामने। किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कुछ कुछ लोग मंदिर में इधर आते समय देखते हैं, इतना कम कपड़े पहने हैं, आप डर जाएंगे उनको देखकर। ऐसा कपड़े, इतने कम कपड़े, कुत्ते बिल्ली जैसे पहने कपड़े, कुत्ते बिल्ली तो पहने ही नहीं ना ऐसे, इतना शरीर को दिखाने की क्या जरूरत है दूसरों को? देखिए, शरीर को ढकना मानव सभ्यता है, मानव जीवन में जो लोग शरीर को ढकते नहीं हैं ठीक ढंग से, वो जानवर में गिने जाते हैं, ऐसे लोग। लेकिन आजकल पुरुष स्त्री कम कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं, मेरी सुंदरता देखो, मेरे खूबसूरती देखो, ये वो दूसरों को प्रवोक करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रवोक करना है। हाँ करेक्ट। अभी दिल्ली में पुलिस लोगों ने बोला कि अगर स्त्रियां सही ढंग से कपड़े पहनते हैं तो 90% केसेस कम हो जाएगा हमारा, ऐसे उन्होंने लिखा है। लेकिन स्त्रियां ऐसे दूसरों को जगाने वाली, जगाना बोलते हैं क्या, उत्तेजित करने वाली, वो सही शब्द है, दूसरे पुरुषों को उत्तेजित करने वाले ढंग से कपड़े पहनते हैं, जिसके कारण पुरुष लोग तो वैसे तो गए गुजरे पुरुष लोग भी हैं, वो कुत्ते बिल्ली जैसे ऑलरेडी हैं वो लोग हैं, वो लोग ऐसे उत्तेजित करने वाले कपड़ों को देखकर वो लोग स्त्री के पीछे पड़ते हैं और गलतियां होता है। लेकिन ऐसे स्त्रियों के हृदय में क्या अच्छा होता है, मैं उत्तेजित करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पीछे नहीं पड़ना चाहिए वो लोग, मुझे तकलीफ नहीं देना चाहिए, ऐसे बोल रही है स्त्रियाँ, कितना मूर्खता है। तो अगर उनको उत्तेजित करके गलत काम हो गया तो क्रिमिनल केस हो जाता है वो बाद में, है कि नहीं? तो इसलिए इधर बताया गया कि स्त्रियाँ कपड़े ओवरली अट्रैक्टिव फैशन में पहनती है ताकि पुरुष लोग उत्तेजित होते हैं, वो एक बात बताया गया है। और साधारण लोग भी बहुत गर्व करते हैं कलयुग में, जिसके पास एक भी पैनी पैसा भी नहीं है वो भी गर्व करता है, सब लोग ये अपने आप को बड़ा मानते हैं ऐसे। आजकल सब लोग दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े हैं। जैसे एक बार मैंने एरोप्लेन में देखा तो गांव के लोग बैठे थे, कुछ लोग गांव के लोग बैठे थे, मैं बैठा था और दो बूढ़े लोग बैठे थे, तो वो पूछ रहा है उसके मुंह में क्या बोलते हैं, तंबाकू है उसको, वो अपने फ्रेंड को पूछ रहा है थूकना कैसा है, एरोप्लेन से थूकना चाहता है, एरोप्लेन में विंडो में क्या थूक सकते हैं आप है? तो आजकल कोई भी एरोप्लेन में जाते हैं आजकल, है ना, क्योंकि उनके बेटे गल्फ में जाकर पैसा इकट्ठा करके लाए हैं, है ना, पैसा की कमी नहीं है आजकल का, सब लोग जाते हैं ऐसे है। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर पैसा आ जाता है तो गर्व भी बढ़ जाता है ना। सब लोग दिखाना चाहते हैं, देखो मेरा बेटा अमेरिका जाकर वापस लौटा है, हम लोग एरोप्लेन में जा रहे हैं। और गांव में भी आजकल बड़ा बड़ा कार आ गया, देखा आपने, लोग दिखाना चाहते हैं। और कुछ लोग घर कैसे बांधते हैं देखा अपने गांव में, 50 लाख में 1 करोड़ में बांधते हैं बड़ा घर आजकल, क्योंकि इंसान के अंदर गर्व आ चुका है कलयुग में है। लोग इम्प्रेस करना चाहते हैं दूसरे लोगों को, ये बता रहे हैं ऐसे। और क्या बता रहे हैं, मेन आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग टी एंड च्यूइंग टोबैको। पुरुष लोग शराब पीते हैं आजकल, ये जो टोबैको तंबाकू जो है उसको अच्छे अच्छे पैकेट में, क्या बोलते हैं उसको, गुटका, गुटका बोलते हैं उसको, हाँ एकदम अच्छे अच्छे पैकेट में बनाकर लोगों को देते हैं। ट्रेन में इतने लोग उसको लेकर खाते हैं उसको, इतना वो शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, आत्मा के लिए भी घातक है वो, तो लिख रहे हैं वही शराब पीना। हमारे लोग जो गोवर्धन एको विलेज के ब्रह्मचारियों ने मुझे बोला कि मैंने सोचा, मैंने बोला उनको, प्रभु जी आप लोग तो गांव में प्रचार करते हो, गांव के लोग एकदम सीधे साधे होते हैं, वो लोग एकदम मासूम होते हैं, खेती में काम करते हैं, शाम को आकर रामायण कथा सुनेंगे, गीता भागवत सुनेंगे, तो आप लोगों को प्रचार काम एकदम आसानी से हो जाएगा, हजारों लोग भक्त बन जाएंगे। वो बोले प्रभु जी आपको मालूम नहीं है गाँव में कितना शराब पीते हैं लोग, तो किसान लोग वगैरह हर दिन शराब पीने वाले भी होते हैं। तो बोले कि उनको शराब चुटवाना इतना मुश्किल काम है, जैसे तंबाकू चुटवाना, सब लोग क्लास में पीछे बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते हैं, आजकल तो उनको बोलना पड़ता है अरे इधर तंबाकू मत खाओ ऐसे है। तो ये लिखते हैं प्रभुपाद जी, लिखते हैं देखिए, ये शराब पीना, सिगरेट पीना, चाय पीना, तंबाकू चबाना, ऐसे बोलते हैं, ये सब मन पुरुष करता है। पुरुष ही नहीं, आजकल लड़कियां भी एक सिगरेट पीते, एकदम पतला एक सिगरेट है उनके लिए, स्पेशल सिगरेट है उनके लिए, पुनः शहर में देखा जाता है वो भी। तो ये सब लिखते हैं प्रभुपाद जी। आगे पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तीन चीज है, प्राइड, अटैचमेंट टू वुमन, इंटॉक्सिकेशन, मतलब अहंकार। अगर हमारे अंदर अहंकार आ रहा है मतलब कलिराज बैठ गया सर के ऊपर, समझ लेना है। नहीं तो अगर कोई स्त्रियां ठीक ढंग से कपड़े नहीं पहनती, पुरुषों पर पुरुषों को आकर्षित करना चाहती है अपने पति को छोड़कर, देखिए पति के समक्ष स्त्री एकदम सुंदर पहन सकती है। शास्त्र में बताया गया है कि जब घर में रहती है अच्छा बाल को अच्छा रख सकती है, अच्छे कपड़े पहन सकती है, लेकिन बाहर के पर पुरुषों को आकर्षित करने वाले तरीके से उनको कपड़े नहीं पहनना चाहिए, वो बताया गया है। और नशा पदार्थ को लेना, ये तीन चीज कलयुग के बुरे चीज माने गए हैं। आगे पढ़िए,
और वे स्त्री तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान है। स्त्रियां पुरुष के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं, और पुरुष को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा तंबाकू चबाने की लत पड़ गई है। ये सारी आदतें या सभ्यता का तथा कथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है, और इसलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त है। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, लेकिन वह मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है। यह दवा है ब्राह्मण संस्कृति अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना।
ब्राह्मण संस्कृति मतलब क्या है, सर्वप्रथम भगवान को मानना, भगवान कृष्ण को मानना, वो सर्वप्रथम है। उसके बाद देवताओं को मानना, उसके बाद गायों को रक्षा करना, उसके बाद वैदिक ग्रंथों को पढ़ना और जीवन में उतारना, और जैसे 5 लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, बच्चों को, स्त्रियों को, बूढ़ों को, गाय को और ब्राह्मणों को जो शिक्षा देते हैं, 5 की सुरक्षा, ये सब ब्राह्मण संस्कृति में आता है। आगे,
आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तु।
आगे जाकर यही बात बताते हैं कि कलयुग में लोग पैसे के पीछे पड़ते हैं, सब लोग पैसा 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 पैसे के पीछे पड़ते हैं, और इन चीजों को पालन नहीं करते हैं। वही बात आगे भी बताते हैं प्रभुपाद जी। हम आगे जाते हैं 25वां श्लोक। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, उसके तात्पर्य में कि ये मानव समुदाय में आप वो तात्पर्य ले लीजिए 25वां तात्पर्य, उधर देखिए थोड़ा आगे पढ़िए तो दो तीन लाइन पढ़िए।
धर्म के नियम कहीं रूढ़ियों या मनावकृत सूत्रों पर नहीं अपितु चार मूल्य अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं, ये हैं तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जन साधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सिखाना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजों को स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर ना हो किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो, यथा उपवास करना।
या करेक्ट, जैसे एकादशी के दिन हम लोग उपवास करते हैं ना, अभी आने वाले सोमवार को एकादशी है, हम उपवास करते हैं, सिर्फ सांबर राइस ऐसे कुछ लेते हैं, फल, कुछ लोग फलाहारी होते हैं, कुछ लोग दुग्धाहारी होते हैं उस दिन, लेकिन उस दिन हम माला जपना बड़ा बढ़ाते हैं। एक सन्यासी बता रहे थे, मैंने उस सन्यासी को पूछा कि एकादशी कभी भी आ जाता है, संडे को आता है और मंडे को आता है, इसलिए मैंने हर बुधवार को ज़्यादा माला करना करके मैंने ऐसा अपने आप के लिए कुछ नियम बना लिया था। लेकिन वो सन्यासी बोले नहीं नहीं, एकादशी के दिन ही आपको ज़्यादा माला करना चाहिए, ऐसे बोले। तो वो कारण भी बोले, वो बोले कि एकादशी के दिन वो बोले कि ज़्यादा पूर्णिमा का दिन कब आता है, फुल मून कब आता है, हाँ चरण बाद वो पूर्णिमा के निकट होता है वो, हाँ तो बोले कि इस दिन से वो एकादशी के दिन जो हम माला वगैरह करते हैं ना उससे मन शांत होता है, उससे ऐसे बोले, नहीं तो हमारे मन पागल जैसा होता है उसके, इसलिए एकादशी के दिन करने से ही सेवन करने से आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा आपको, ऐसे बोला उन्होंने। तो इधर भी प्रभु जी लिखते हैं कि एकादशी के दिन हम लोग बाकी कर्मों को कम करके आध्यात्मिक कर्मों को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, इसलिए हम उपवास करते हैं। उपवास क्यों करते हैं, कुकिंग नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, कुछ लोग एक ही टाइम खाते हैं, कुछ लोग दो टाइम खाते हैं तो थोड़ा ही खाते हैं, तो इस तरह वो तपस्या बोलते हैं प्रभु, ये एक उदाहरण है तपस्या के लिए। और इस तरह आगे जाकर ये तीन विषयों के बारे में आपको जो भी बोला वही बोल रहे हैं प्रभु जी इधर। तो हम लोग आगे जाते हैं, सो यू लीव द 26, 27, अभी एक महत्वपूर्ण श्लोक आने वाला है अभी इधर। या वही बात बताया गया कि परीक्षित, करेक्ट, अभी परीक्षित और कली के बीच में एक संवाद आने वाला है, वो पढ़ेंगे अभी। सब तब ये सब देखने के बाद कलिराज समझ गया कि अभी ये शक्तिशाली राजा आ गया है मेरे सामने, अपने गदा को भी छोड़ दिया, अपने मुकुट को भी निकाल दिया और अपने जो राजा राजा का वेशभूष पहना था ना उसको छोड़ दिया, उसको भी छोड़कर वो परीक्षित के पांव में गिरता है नीचे, अभी आप देखेंगे। हाँ ऐसे गिर गया अभी, हाँ ऐसे परीक्षित का आश्रय लेता है वो। और 30वां श्लोक में बताया गया है, 30वां देखिए, पतितं पादयोर वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावदीत् श्लोक्य आह चेदं हसन्निव। तो महाराज परीक्षित ने उसके शरणागति को स्वीकारा और तुरंत उनको मारा नहीं, कृपा दिखाया उनके ऊपर, दीनवत्सल, क्योंकि शरण जो जाता है उसको मारता नहीं कोई राजा, आदर्श राजा मारता नहीं, इसलिए मारे नहीं। और लेकिन हसन निव, उन्होंने मुस्कुराया, समझ गए कि अभी शरण आ गया है कली जिस तरह है, तो अभी मेरा बात मानना ही पड़ेगा उसको। राजोवाच न ते गुणाकेश यशोधराणाम बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बन्धुः। पढ़िए अनुवाद।
राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरे शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो।
जैसे भगवान ने कालिया को बोला, देखो कालिया मैं मार सकता हूँ तुमको, लेकिन मारूंगा नहीं क्योंकि क्योंकि तुम शरण गए हो। लेकिन शरण लेने के बाद भगवान ने क्या बोला कालिया को, निकल जाओ हा? तुम फिजी में चले जाओ हा? इधर नहीं रह सकते वृंदावन में हा? क्योंकि वृंदावन में यमुना को तुमने दूषित कर दिया है, मेरे सब गोप कहना चाहते हैं इधर, गाय इधर आकर पानी पीते हैं, तो निकल जाओ इधर से, उसको निकाल दे। इस तरह से परीक्षित ने भी कलिराज को बोला कि ठीक है तुम शरण ले लिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर अनुकंपा दिखाकर हमारे पास बिठा लेंगे तुमको, हाँ इधर नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम्हारे रहने से क्या होगा वो अगले श्लोक में बोलते हैं 32 में, तुम क्यों इधर नहीं रहना चाहिए मेरे राज्य में, वो बोलते हैं। त्वं वर्तमानां नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्तोऽयम् अधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यम् अनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। अनुवाद पढ़िए।
यदि कली रूप अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दम्भ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा।
देखिए क्या क्या अवगुण बताया गया है। कली रहने से पहले तो मैंने चार बोला आपको, अभी बड़ा लिस्ट दिया गया है इधर, लोभ भावना, धोखेबाजी, चोरी, इस तरह अभाग्य अभाग्यता और धोखा और झगड़ा, अहंकार, ये सब बढ़ता है कलयुग से। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य
किसी भी मत के अनुयायीगण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले कह चुके हैं, इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे क्यों बोलते हैं बाबा जी? देखिए कुछ को हिंदू लोगों को क्रिश्चियन लोग कुछ प्रलोभन देते हैं, तुमको क्या चाहिए बोलो, तुमको गाड़ी चाहिए क्या, तुम्हारा गाड़ी चाहिए क्या, घर चाहिए क्या, शादी करना है क्या, पैसा चाहिए क्या, हम देंगे। लेकिन देकर हिंदुओं को जब क्रिश्चियन बनाते हैं वो क्रिश्चियन बनने के बाद ये लोग अनेक बुरे आदतों को सीखते हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, इस तरह के चीज़ों को सीखते हैं। तो गांधी जी उनके ज़माने में भी एक स्टेटमेंट बोला उन्होंने, वी डू नॉट वॉन्ट दैट रिलीजन विच यू नो अट्रैक्ट पीपल टू ड्रिंक एंड स्मोक। हमारे भारतवासी लोग उस धर्म को ना पालन करें जिससे लोग शराब पी रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, वो नहीं चाहिए। वही प्रभाज लिख रहे हैं, हिंदू लोग अपने हिंदू धर्म को तो छोड़कर मुसलमान धर्म को अपना कर गोमांस खाते हैं कुछ लोग, नहीं तो कोई क्रिश्चियन बनकर सिगरेट फूंकते हैं, शराब पीते हैं, इस तरह बदलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन भागवत क्या बोलता है, तुम ये चार चीज़ों को फॉलो करो, कुछ भी धर्म को ले लो तुम, हैं किसी भी धर्म के हो, लेकिन ये चार नियमों को जो बताया गया है ये पालन करो, ऐसे बताते हैं। क्योंकि अलग अलग देशों में देखिए बाइबल में दिया गया कि सिर्फ शुक्रवार को मांस खा सकते हो, बाकी दिन नहीं। लेकिन आजकल ये लोगों ने शुक्रवार को गुड फ्राइडे बना दिया और बाकी 6 दिन खाते हैं मांस, एक दिन खाना नहीं बाकी दिन खाने का, ऐसे बना दिया उन्होंने, उल्टा कर दिया उसको ताकि ज़्यादा दिन खा सकते हैं इसे। तो इस तरह जीसस ने लोगों को ब्रेड और ग्रेप जूस वितरण किया था। तो ये लोगों ने ब्रेड के बदले क्या खाना चालू कर दिया, मांस, और ग्रेप जूस के बदले वाइन चालू कर दिया। इस तरह डिग्रेड हो गया उनका संस्कृति, इसे यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो हर धर्म के लोग ये चार चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। तो मैं अभी खास लोगों को पकड़ रहा हूँ, सिर्फ अभी कल ही बोल रहा है, यू कम टू 36th वर्स, 36।
36वां श्लोक
कली रुवाच।
अभी कली बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखेंगे कली है। तो परीक्षित देखिए आदेश दे रहा है तुमको। तो अभी कली बोल रहा है
यत्र क्ववात वत्स्यामि सार्वभौमत तवाज्ञया लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु तेषु शरासनम्।
ये बोल रहा है कि हे राजन, मैं कहीं भी देखता हूँ आप ही दिखाई दे रहे हैं मुझे तलवार के साथ। मैं किधर जाकर रहूंगा आपके राज्य में? आप बोल रहे हैं कि निकल जाओ, मैं किधर निकलूंगा? ऐसे वो बोल रहा है, आपसे डर हो रहा है मुझे, ऐसे बोल रहा है। इसलिए बोल रहा है कि आप ही कुछ उचित स्थान दे दीजिए मुझे रहने के लिए, उन स्थानों में मैं हमेशा के लिए रहूंगा। और मैं आपके आश्रम में भी रहूंगा और आपके दिए हुए उचित स्थानों में ही मैं रहूंगा, ऐसे बोलते हैं। सो तब वाचा 38 अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये दधौ द्योतं पानं स्त्रियस्सूना यत्राधर्मश्चतुर्विदः।
देखिए यही श्लोक से प्रभुपाद जी ने चार नियम इस्कान के लिए बनाए हैं। द्योतं पानं स्त्रियस्सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विदः। ये अधर्म के चार चीजें हैं, क्या क्या है तो पढ़िए, अनुवाद पढ़िए।
सूत गोस्वामी ने कहा कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति तथा पशु वध होते हैं।
तो उस तात्पर्य के लास्ट पार्ट में जाइए, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, प्रभा जी तीन पॉइंट लिखते हैं। देखिए उस सात्रे में लास्ट पार्ट प्रभुपाद बोलते हैं कि ये नियम देखिए एकदम ठीक ठाक बोल रहे हैं प्रभुपाद, नियम दे रहे हैं। महीने में दो दिन सब लोगों को एकादशी करना चाहिए, वो लिखते हैं पहले, उसे लिखिए पढ़िए वो पॉइंट वन।
एक मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम दो दिन अनिवार्य उपवास तपस्या। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे दो दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
करेक्ट, देश के लिए भी बहुत धान्य बच जाएगा, बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, अगर सब लोग दो दिन फास्टिंग करते हैं तो। दूसरा पॉइंट,
तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए।
पुरुष का कितना होना चाहिए वायस?
24
और लड़की का
16।
उसमें शादी कर देना चाहिए, क्यों? क्योंकि शादी हो गया तो स्त्री किसी और पर पुरुष से आकर्षित नहीं होगी, शादी हो गया तो। और पुरुष भी शांत हो जाएगा, नौकरी करेगा, उसके बाद परिवार को संभालेगा, नहीं तो आजकल 32 तक शादी नहीं करता पुरुष, 30-32 तक। और लड़कियां भी 28-30 होने के बाद शादी करते हैं, उसके पहले सब हो जाता है, सब गलतियां कर देते हैं उसके पहले, इसलिए वो प्रपंच लिखते हैं।
उनका अनिवार्य विवाह होना चाहिए। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा देने में कोई हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता हो भी जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए। तलाक एक्ट से वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतः इसको मिटा दिया जाए।
और तीसरा पॉइंट बोलते हैं तो नागरिक जो है उनको 50% आध्यात्मिक चीजों के लिए खर्चा करना चाहिए। इस तरह बोलते हैं कि कर्मयोग करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भागवतों की सेवा करना चाहिए और दिव्य पवित्र स्थानों में रहना चाहिए, वसन करना चाहिए। पांच चीज बताते हैं इस तरह। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सब करने से हम कली के प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं आसानी से। तो ये तात्पर्य का नंबर नोट कर लीजिए, अच्छा तात्पर्य है ये 1738 बहुत सुंदर तात्पर्य है।
पुनश्चयाचमानाय रूपमदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमं। तो कलियुग ने वापस बोला उनको, ठीक है चार स्थान दे दिया मुझे आपने, जिधर लोग मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध स्तंग करते हैं और नशा करते हैं, उधर जाकर जीऊंगा मैं, लेकिन आपके आपके राज्य में इस तरह के स्थान ही नहीं है मुझे रहने के लिए, इसलिए और कुछ पांचवा स्थान भी दे दीजिए, ऐसे मांगता है। तब परीक्षित ने बोला, ठीक है जिधर लोग ज्यादा सोने को इकट्ठा करके रखते हैं, धन दौलत को इकट्ठा करके रखते हैं, तुम उधर भी रह सकते हो, ऐसे बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि ज्यादा पैसा इकट्ठा करके मत रखो, आप खर्चा करते जाओ भगवान की सेवा में, ऐसे बोले। इसलिए ये बताते हैं पांचवा स्थान दिया उनको, क्योंकि सोना ज्यादा इकट्ठा करने से क्या होता है, क्या क्या होता है पढ़िए वो अनुवाद में, 39 लास्ट लाइन, फॉल्सिटी इंटॉक्सिकेशन लस्ट एनवी एंड एनमिटी, पांच चीज बताया गया है। ओके या ओनली द लास्ट फाइव थिंग्स आर मेंशन्ड इन 39th वर्स अनुवाद, ओनली रीड द फाइव वर्ड्स, व्हाट हैपेंस, टाइम हो गया अभी।
असत मद काम ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं।
हाँ ये पांच चीज पड़ता है पैसे पैसे ज्यादा इकट्ठा करने से, ऐसे बोलते हैं। और 41 लास्ट लोग आए पढ़ेंगे 41। अते तानीन सेवेत बुभूषु पुरुषत् पचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरुः। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, बढ़िया ट्रांसलेशन अनुवाद।
अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा धर्मोपदेशक जन नेता ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त चार अधर्मिक कार्यों को कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए।
देखिए समझा आप लोगों ने, बहुत महत्वपूर्ण है, बताते हैं कोई भी लीडर के पद में हो, किसी भी तरह के लीडर के पद में, उनको ये चार चीजों को जरूर छोड़ देना चाहिए, अगर नहीं छोड़ेंगे इसके कारण उनका अधोगति हो जाएगा और उनके उनके शासन में जो भी हैं। देखिए आप ये भी ट्रंप मालूम है आपको, ट्रंप कौन है, ट्रंप ट्रंप कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उनके संबंध में एक ये आया था न्यूज़ आया था न्यूज़ आइटम, एक मिनट, उनके संबंध में एक न्यूज़ आइटम आया था उनके संबंध में कि उन्होंने एक स्त्री के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया करके एक न्यूज़ आइटम आया था ऐसे, तो उन्होंने मना किया, ये गलत बात है करके बोला उन्होंने। हाँ तो वो गलत बात करके साबित करने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा किया। हाँ उसके बाद स्थापन हो गया अभी कि उन्होंने गलती किया है, क्योंकि वो स्त्री को दबा कर रखने के लिए उस स्त्री को बहुत घूस दिया है ये ट्रंप के असिस्टेंट ने, ऐसे दिया है, वो भी प्रूव हो गया, पेपर में प्रूव हो गया। प्रूव होने के बाद ट्रंप क्या बोल रहा है, ठीक है मैं तो राष्ट्रपति हूँ, कोई कुछ बोल नहीं सकता, मैं तो नंबर वन आदमी हूँ, सब छुप रहो, ऐसे बोल रहा हो। तो अमेरिका में ऐसा हुआ क्योंकि अगर लीडर लोगों में ये चार चीज गलतियां होंगे उसके कारण क्या होगा, पूरा कलयुग कलयुग का शासन हो जाएगा, कलयुग सब लोगों को दूषित कर देगा उसके द्वारा, ऐसे लिखते हैं। इसलिए क्या क्या बोलते हैं, रिलीजनिस पब्लिक लीडर ब्राह्मण सन्यासी, सब लोगों का नाम लिया है, राजा हो धार्मिक कोई हो पब्लिक लीडर हो ब्राह्मण हो सन्यासी हो कोई भी हो। तो इस तरह तो ये अध्याय का खास श्लोकों को हमने पढ़ लिया है, महत्वपूर्ण चीज। तो समरी में आज हमने क्या समझा, दो तीन महत्वपूर्ण सीख सीखा हमने, उसको बोलकर मैं प्रवचन को विराम दूंगा। एक है गाय और बैल दोनों को देखकर परीक्षित ने पूछा कि तुमको कौन मार रहा है, वो लोगों ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने उंगली दिखाना नहीं चाहिए किसी के ऊपर, दोषारोपण नहीं करना चाहिए करके नहीं किया धर्म ने। इससे हम लोग क्या सीखते हैं,
हम जब दुख हमें प्राप्त होता है हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने के बदले हम क्या करें, हम मान ले कि भगवान की ईश्वर की इच्छा हो, हम इससे हम क्या अच्छा चीज कर सकते हैं, ऐसे सोचना चाहिए, दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना, वो एक बात सीखा हमने, अनेक उदाहरण दिया मैंने। दूसरा चीज हमने सीखा आपत धर्म के बारे में, आपत्काल में जो धर्म किया जाता है वो साधारण टाइम में नहीं करना चाहिए, वो बात एक सीखा हमने। और चार विषयों के बारे में हमने सीखा, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध नशा नहीं, इनके ये तो स्थूल हो गया, सूक्ष्म तरीके से ये इसका मतलब क्या है, मांस खाने का मतलब है पर जीवों को क्लेश नहीं देना, ऐसे चीजों को भी हमने सीखा है ना आज, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी भक्त हो, आप लोगों में से अनेक लोग सोलह मला करते हो, अवचार नियम पालन करते हो, अभी हमको सूक्ष्म चीजों को भी फॉलो करना चाहिए, तो वो सी काम ने। और लास्ट में परीक्षित ने कली को चार स्थान दिया और पांचवा स्थान भी दिया, जिधर लोग सोने को इकट्ठा करते हैं, और जो लोग लीडर्स हैं उनको ये चार जो दिखाया गया है इधर दिख रहा है सर, ये इन विषयों से हट कर रहना पड़ेगा उनको, और ये पांच चीजों से जितना वो हट कर रहते हैं, दूर रहते हैं, उतना वो शुद्ध रहेंगे, जितना शुद्ध रहेंगे वो कलयुग से बचकर रहेंगे और भगवान के नाम लेकर भजन करके भगवत धाम लौट सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अध्याय है, अनेक लोग जानते नहीं है भागवत के 17वां अध्याय, इधर अमर चरित्रवान जीवन जीने के लिए क्या क्या करना होता है वो बताया गया है इस अध्याय में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की और भक्तवृंदा की।